ओम शांति। रामदास कॉलोनी जलगांव की प्रमिला बहन खोया पाया विभाग से संपर्क करें। आज की अभी इस क्लास में हम सबके बीच में आदरणीय भ्राता रमेश जी का हम सब करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय भ्राता रमेश जी बाबा के मुख्य रतन यज्ञ के वरिष्ठ भाइयों में से एक हैं। आपने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की, बीकॉम एलएलबीबी मुंबई यूनिवर्सिटी से ही आपने चार्टेड अकाउंटेंट भी किया, फर्स्ट क्लास में पास किया। अपना स्नातकोत्तर अध्ययन करने पर के बाद आपने पूर्व तथा पश्चिम दर्शन शास्त्र में किया। रमेश भाई जी ने 4000 से भी ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया है, जिसमें दर्शन शास्त्र, कला साहित्य, अर्थशास्त्र मुख्य हैं। आप मुंबई यूनिवर्सिटी में 8 साल तक लेक्चरर के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी तथा कॉलेज ऑफ फिलोसफी में भी 8 वर्ष तक आप लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। अपने युवा काल से ही आपने 200 से भी ज्यादा चैरिटेबल तथा सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए थे। आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के संपर्क में 1952 में आए। साकार मम्मा बाबा की आपने बहुत पालना ली और 61 से संपूर्ण रूप से आप इस विश्वविद्यालय से जुड़ गए। आपने बाबा की प्रदर्शनी बनवाई, सेवाओं की को विस्तार देने में जिसका बहुत अधिक प्रदर्शनियों का योगदान रहा, उसका श्रेय भी हमारे आदरणीय रमेश भाई जी को ही है। आप विश्वविद्यालय के प्रथम विदेश सेवा के भी सदस्य रहे, जिसकी वजह से लंदन तथा पश्चिम के देशों में तथा हांगकांग आदि में सेवाओं की शुरुआत हुई। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका के कई देशों में जाकर आपने सेवाओं की शुरुआत की। आपके युगल उषा बहन जी के साथ भी आपने बहुत देशों में भ्रमण करके अनेक आत्माओं को बाबा का बनाया और सेवाओं में बहुत अधिक विस्तार किया और आप गुजरात में भी बाबा की सेवाओं के स्थान खोलने के निमित्त बने। वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं तथा वित्त, संपत्ति, न्याय, प्रशासनिक सेवाओं के भी निमित्त हैं। आप वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर सेक्रेटरी भी हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। विश्वविद्यालय के जूरिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। आप श्री आध्यात्मिक फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं और स्पार्क के चेयरपर्सन भी हैं। इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं और ज्ञानमृत में भी हर मास हम आपके लेख पढ़कर के बाबा की सेवाओं में आपने जो ड्रामा आदि आजकल जो चल रहा है ज्ञानमृत के अंदर, किस प्रकार से सांस्कृतिक के द्वारा ड्रामा डायलॉग से बाबा की सेवाओं में विस्तार किया आपने, उसके बहुत सुंदर अनुभव हम लोग ज्ञानमृत में पढ़ते रहते हैं। आपको यूएन की तरफ से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंस इन फाइनेंस मैनेजमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ज्ञानमृत में पवित्र धन आदि कई लेख हम पढ़ करके अनेक ब्राह्मण परिवार और नई आत्माएं भी लाभान्वित होती रहती हैं। बाबा की महिमा के साथ साथ बाबा के बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। आपके लिए मैं 2 शब्द कहूंगी। आप हुए बाबा पर न्योछावर, देश के बाबा के नैनों में नीर। रमेश भाई जी का बड़ा सुंदर अनुभव है, बाबा ने इतना आपको प्यार किया और बाबा की आंखों में आंसू देखकर आप बाबा के बन गए। देख के बाबा के नैनों में नीर, साकार मम्मा बाबा की स्मृतियों से सजा आपका मन कुटीर, सजा आपका मन कुटीर। आप ट्रस्टीशिप के कमलवीर, आप ट्रस्टीशिप के कमलवीर और सेवाओं के निर्विघ्न महावीर, सेवाओं के निर्विघ्न महावीर, विधि विधान के विजय रणवीर, विधि विधान के विजय रणवीर, आप सदा श्रीमत प्रति सजग और गंभीर, श्रीमत प्रति सदा सजग और गंभीर, आप सेवाओं में नवीनता के शीतल समेत आपसे रक्षित ये यज्ञ प्राचीर, ऐसे बाबा के विशेष रतन आदरणीय रमेश भाई जी का फिर से हम एक बार स्वागत करते हैं। और अभी हम क्लास करेंगे वर्तमान समय की पुकार।
ओम शांति। बहन जी ने बाकी सब बातें बताई परंतु इतना नहीं बताया कि रमेश भाई एक आत्मा है और परमात्मा की संतान है, ये मुख्य परिचय है। उसके बाद बाकी सब बातें तो होती ही रहती है। वर्तमान समय की पुकार के बारे में आप जानते हैं, बाबा ने पुकार शब्द के बारे में अनेक बातें कही हुई है। एक बात कही आप सबको याद होगा, बाबा ने सबको पूछा हुआ है कि आपके भक्त और आपकी प्रजा आपको पुकार रही है कि आप कहाँ हो, आकर के हमको शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्रेम दो, इस प्रकार की हमारी समस्याएं जो भी है उसको हल करने में आप मदद करो। इस प्रकार से ऐसी पुकार जो है उस पुकार आपको सुनने में आती है, ये बाबा ने समस्त दैवी परिवार को पूछा हुआ है कि ऐसी पुकार आपके भक्त, आपके प्रजा आदि जो भी है, आपके संपर्क में आने वाले जो भी है, जिसके द्वारा जो आपके द्वारा इस दैवी परिवार के अंदर या तो भक्त परिवार के अंदर जन्म लेने वाली है, इनकी पुकार सुनने में आती है। और बाबा कहते हैं मुझे ऊपर सुनने में आती है और आप तो दुनिया में रहते हो तो भी आपको सुनने में नहीं आती है। और फिर बाबा ने उसी के ऊपर अव्यक्त मुरली भी चलाई है, पुकार और उपकार। आपको याद होगा ये दो शब्द जो है पुकार और उपकार के, जिन्होंने जो आपको पुकार रहे हैं उसके ऊपर उपकार करने की वृत्ति, उपकार करने की दृष्टि, उपकार करने की मन में संकल्प आदि आपके मन में आता है, ताकि आपके भक्त और आपकी प्रजा आपके द्वारा सुख शांति आनंद का अनुभव कर सके। तो यही बहुत बड़ी चुनौती है हम सब के लिए कि हमें पुकार अनेक प्रकार की है, उसके अंदर वर्तमान समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय हमको क्या करना है उसको दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है। और प्रत्यक्ष के साथ साथ अपने जीवन में भी उसके आधार पर परिवर्तन करना है, क्योंकि बाबा ने समय की पुकार के रूप में पिछले 2 साल से अनेक बातें कही हुई है कि समय की पुकार है, समय की पुकार है। समय जो है वो नाजुक हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है समय जो है तीव्र गति से आगे जा रहा है। समय की पुकार यही है कि मैं तो तीव्र गति से आगे जा रहा हूँ पर आप बच्चे मेरी गति के साथ साथ तालमेल कर करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। क्योंकि यज्ञ जो है या विश्वविद्यालय जो है वो बहुत 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 स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आप तो यहाँ साल में 1-2 बार आते होंगे, बाकी मुरलियां सुनते होंगे, समाचार सुनते होंगे, हम तो यहाँ पर हर महीने में 2-3 बार आते रहते हैं और उसके आधार पर हमको मालूम है कि यज्ञ जो है ना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वो तीव्र गति का एहसास जैसे ट्रेन में बैठे हुए हो तो इतना मालूम नहीं पड़ता है कि ट्रेन कितनी स्पीड से आगे जा रही है, हवाई जहाज में बैठने के बाद मालूम नहीं पड़ता है कि कितना हवाई जहाज स्पीड से जा रहा है, परंतु आप जमीन पर खड़े हो और ऊपर हवाई जहाज को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि हवाई जहाज बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। या फास्ट ट्रेन आप लोकल स्टेशन के ट्रेन के स्टेशन पर खड़े हो और फास्ट ट्रेन चली जाती है, तब आपको मालूम पड़ता है कि ट्रेन कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से समय और समय के साथ साथ बाबा का कारोबार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से। आपको इसके लिए इसका अंदाज वहां घर पे बैठे हुए या सेंटरों पर बैठे हुए नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि सेंटर्स के भी तीव्र गति इतनी नहीं है जितनी यज्ञ की, हेड ऑफिस की, मुख्यालय की है। क्योंकि यहाँ पर दादियां हैं, दादियों के पुरुषार्थ के आधार पर, दादियों के मार्गदर्शन के आधार पर यज्ञ बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए इस वर्तमान समय की यही समस्या बड़े में बड़ी यही है कि क्या हमारा पुरुषार्थ इतनी तीव्र गति से है। एक अव्यक्त मुरली बाबा ने कही है, बहुत साकार बाबा की मुरली है, उसमें बहुत सुंदर बात बाबा ने कही हुई है। बाबा ने कहा है कि बच्चों को भविष्य की कमाई के बारे में जितना अटेंशन होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है। ये बाबा का जजमेंट है, साकार बाबा का जजमेंट है कि बाबा को यही समस्या है, बाबा की यही समस्या है। बाबा ने कहा कि बच्चों की जो भविष्य की कमाई जो है, भविष्य का प्रारब्ध जो है, भविष्य का परिवर्तन जो भी है, उसके लिए जितना अटेंशन होना चाहिए इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वर्तमान की समस्याओं में से ही ऊपर नहीं आते हैं। एक तो वर्तमान की समस्याएं और भूतकाल को भूल नहीं सकते, भूतकाल को भूल नहीं सकते, इसलिए भूतकाल जो है ना भूत बन करके उनको परेशान करता रहता है। भूतकाल की परेशानी और वर्तमान की जो भी समय की जरूरत है, घर की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, उसके पीछे ही इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि 85% 90% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं, वर्तमान की समस्याओं कहे या वर्तमान की उलझने कहे, उन उलझनों से ऊपर नहीं आते हैं। यह करुण वास्तविकता है सबके लिए, कहते हैं जिसके पास धन है उसके लिए, जिसके पास धन नहीं है उनके लिए, सबके लिए बाबा यही बात कहते रहते हैं। धन नहीं हो तो क्या हो सकता है, पुरुषार्थ कर सकते हैं। आप सबको एक बात बता दूं, मातेश्वरी जी जो मातेश्वरी सरस्वती जिसको कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, वो जो है ज्ञान में आई, उनके पास कुछ नहीं था। आप सबने मातेश्वरी से ज्यादा धन का सहयोग यज्ञ को दिया हुआ होगा, परंतु मातेश्वरी जी इतना भी धन का सहयोग जितना आपने दिया होगा इतना भी नहीं दे सकी थी। परंतु अपनी धारणा के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने ज्ञान सुनकर उसके सुनाने के आधार पर, अपनी जो कारोबार, जो ईश्वरीय कारोबार में सबको संतुष्ट करने का कारोबार आदि जो है, इसके आधार पर इतना तीव्र पुरुषार्थ किया। जो आपने दो दिन पहले की मुरली में पढ़ा होगा कि बाप मम्मा जो है वो बाप से भी आगे चली गई, और इसलिए सत्युग में गाया हुआ है पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो ये गाया हुआ है। इसका कारण मतलब धन के आधार पर कारोबार करना हो तो ठीक है, पर धन के अलावा अनेक प्रकार की और भी साधन सामग्री बाबा ने इस ईश्वरीय ज्ञान में दी हुई है, जिसके आधार पर आप श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हो। और इसलिए ही साकार बाबा की मुरली में बाबा ने आगे कहा हुआ है, जो कोई सुनता नहीं है, कोई करता नहीं है, बाबा ने कहा हुआ है कि वर्तमान जीवन की, खुद की और खुद के परिवार के पालना के लिए जितना धन आवश्यक हो, इतना अगर आपके पास धन हो तो फिर वर्तमान का धन के बारे में, वर्तमान की कमाई के ऊपर अटेंशन न देते हुए भविष्य की कमाई के बारे में चिंतन कीजिए। क्योंकि जो भी वर्तमान की कमाई है, वर्तमान का जो भी है, वो सब यहाँ ही रहने वाला है। शंकराचार्य जो है इन्होंने बहुत सुंदर शंकर भाष्य में लिखा हुआ है कि धनानी भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जन श्मशाने, धन जो है वो आपका यहाँ ही रहेगा, आपके पास जो गाय भैंस आदि जो भी होंगे वो भी यहाँ रहने वाली है, आपकी पत्नी जो है वो भी घर के उम्र तक जो है घर के तक आंगन तक आएंगे, आपके सन्यास मित्र संबंधी है श्मशान तक आएंगे, पर उसके बाद आगे का क्या, आगे का क्या, ये भविष्य क्या है उसके बारे में शंकराचार्य भी कहते हैं, सबको कहते हैं उसका चिंतन करो, भविष्य का चिंतन करो, भविष्य की प्रारब्ध का सोचिए। और उसको आधार पर उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ कीजिए। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि वर्तमान की समस्याएं जो भी है, वर्तमान की धन की जरूरत जो भी है, इतनी अगर आपके पास पर्याप्त तो हो पर तो क्या होता है, जो जिसके पास 1000 रुपया होगा वो कहेंगे मैं लक्षाधिपति बनू, लक्षाधिपति वाला जो कहेंगे मैं करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनने वाला फिर और आगे आगे बढ़ता रहता है। इसके कारण इस प्रकार का एक लोभ जो है, इस लोभ के कारण वर्तमान के वो श्रेष्ठ बनाने के लिए अर्थात वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ भविष्य बनाने के प्रति जितना अटेंशन होना चाहिए, पिछले 2 साल की मुरली है आप पढ़ो, सबके अंदर समय के आधार पर का करना चाहिए और बहुत समय का लंबा पुरुषार्थ होगा तो ही आप जो भी श्रेष्ठ पद चाहते हो वो मिल सकता है। ये बाबा की सावधानियां को, बाबा के मार्गदर्शन को हो, ये सब मिलते हुए भी क्या होता है, हम उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। और इसलिए क्या होता है, आप जानते हैं सतयुग में 4 प्रकार के पद है, एक तो विश्व महाराजा विश्व महारानी, फिर दूसरा उसके रॉयल फैमिली का सदस्य बनना, महाराजा महारानी बनना वो पोजीशन है, और उसके साथ में बनना उसके साथ में रहने वाले दैवी परिवार के रूप में आना वो अलग बात है, तीसरा पोजीशन है साहूकार और चौथा पोजीशन है प्रजा। विश्व महाराजा विश्व महारानी दैवी परिवार साहूकार और प्रजा, बाकी का तो बाबा कहते हैं मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य करने वाले सब यहां से इसी दैवी परिवार से निकलने वाले हैं, सब प्रकार के सब कारोबार करने वाले यहां से ही निकलने वाले हैं। तो इसीलिए हम अपने आप से पूछे, बाबा ने कई बार साकार बाबा की मुरलियों में आता था कि बच्चे अगर आपने अपना वर्तमान तक का जो पुरुषार्थ किया हुआ है और अगर समझो आज शरीर छूट जाता है तो वर्तमान के अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर आपका क्या भविष्य बन सकता है, वो कोई मुझे व्यक्तिगत आकर के मिले तो मैं बता सकता हूं। तो जब मैंने पहली बार बाबा की मुरली में ये बात सुनी कि जो अगर मुझे पूछे कि मेरा भविष्य क्या हो सकता है वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर, तो बाबा के पास मैंने कहा बाबा आज तो आपके पास लाइन लग जाएगी, माउंट आबू से आबू रोड तक की लाइन लग जाएगी। बाबा ने कहा बच्चे तू मेरे बच्चों को नहीं जानता है, मेरे बच्चों को मैं ही जानता हूं और मैं जानता हूं कि कोई मेरे पास पूछने के लिए नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। मैंने कहा क्यों, कहा सबको मालूम है, सबको मालूम है कि मेरे वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर क्या मैं बनने वाला हूं। इसलिए मैं जब क्लास में बाबा कहते थे कि मैं क्लास में पूछता हूं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे, सब लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ तो खड़ा करते हैं पर तो कई सब अपने हाथ खड़ा करने के बाद अपना मुख जो है वो जाकर के आईने में जाकर के देखे तो सही कि हम लायक है या नहीं, या पीछे वो नारद की रूप नारद की बात बाबा बताते थे, आपको मालूम होगा नारद भी गया लक्ष्मी का स्वयंवर होने वाला था तो नारायण नारद जा रहा था तो श्री नारायण ने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या लक्ष्मी को वरने के लिए जा रहे हो, तो बाबा ने नारायण ने उनको कहा कि जरा अपना मुख जो है ना आईना में तो देख के आओ। आईना में देखने के लिए गया तो देखा तो अपना मुख तो बंदर जैसा था, तो फिर उसने सोचा कि मेरा मुख तो बंदर जैसा है मुझे लक्ष्मी कैसे वरेंगी। ये तो एक सिंबॉलिक कथा है, हम सब अपने आप से पूछे कि हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर क्या हम विश्व महाराजा बन सकते हैं, क्या हम रॉयल फैमिली के मेंबर्स बन सकते हैं, क्या हम साहूकार बन सकते हैं या फिर प्रजा का प्रजा में ही रहेंगे, क्या होगा। और ये मालूम रहे वर्तमान की कमाई के आधार पर हमारा सारा ही भविष्य बन रहा है। एक बार बाबा ने सबको कहा कि बाबा के ज्ञान के आधार पर कितना समय का पुरुषार्थ कितना समय का प्रारब्ध सबका बन रहा है, तो मैं भी उस ग्रुप में था तो मैंने बाबा को कहा कि वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा अगला 21 जन्मों का प्रारब्ध बन रहा है। आप सब यही मानते हो ना कि वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा 21 जन्मों का प्रारब्ध बन रहा है, तो मैंने कहा बाबा 21 जन्मों का प्रारब्ध बन रहा है, तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे हाँ सोच के बताओ, जवाब दो। मैंने कहा हाँ बाबा, सोच के जवाब देता हूँ कि हमारा भविष्य का 21 जन्मों का प्रारब्ध बनने वाला है। तो सीधा ही अव्यक्त बाबा ने मुझे सवाल पूछा कि क्या द्वापर युग से पहले जन्म से आप भिखारी हो जाएंगे, भीख मांगने निकलेंगे क्या? तो हमने कहा नहीं, वहां पर सत्युग में डबल अहिंसक राजा होंगे, डबल क्राउन का भी, क्राउन भी होगा राजा जी का, और पवित्रता का भी क्राउन होगा। फिर द्वापर युग से वो जो पवित्रता का क्राउन है वो निकल जाएगा, खाली राजा बन के रहेंगे विश्व महाराजा के बदली में। तो बाबा ने कहा वो राजा बनने का प्रारब्ध कहाँ से बनेगा? तो मैंने कहा वो भी यहाँ से बनेगा। तो बाबा ने कहा अभी तो आपने कहा कि 21 जन्मों का ही प्रारब्ध बनता है, 22वां जन्म अर्थात द्वापर युग का पहला जन्म का और उसके बाद के जन्मों का प्रारब्ध कब बनेगा, कहाँ बनेगा? तो बाबा ने कहा वो सब यहाँ ही वर्तमान समय में ही बनता है, अगले 81 जन्मों तक का प्रारब्ध यहाँ बनता है, लास्ट के 2-3 जन्म जो है वही आप बच्चों के लिए समस्या का हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर आपका 80-82 वर्ष तक का जन्म तक का पुरुषार्थ और प्रारब्ध बन रहा है। तो इतनी वर्तमान के भविष्य के प्रारब्ध की बातें जो है इतनी हमारे में जागृति है कि हम इस जन्म की कमाई के आधार पर, वर्तमान की कमाई के आधार पर हमारा अगले 80-82 जन्मों तक का पुरुषार्थ प्रारब्ध बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस ज्ञान की प्रारब्ध जो बनती है वो कितनी श्रेष्ठ होती, कितनी महान है। बाबा ने तो वहां तक कहा है कि आप बच्चों के प्रारब्ध जो है इंग्लैंड की महारानी जो है इनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। वर्तमान समय के जो पुरुषार्थ जो करते हो, आपका जो प्रारब्ध जो बन रहा है वो इंग्लैंड की वर्तमान की महारानी जो है उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ बन रहा है। तो मैं हमेशा बाबा को ऐसे बाबा बोलते थे, मैं सवाल पूछता था बाबा ऐसा कैसे होगा, इंग्लैंड की महारानी का तो एक जमाना था कि सारी दुनिया के अंदर उसका साम्राज्य था और उसके भेंट में हमारा कहाँ इतना साम्राज्य वर्तमान में है। तो बाबा ने हंसी से कहा, मेरे को सवाल पूछा कि क्या इंग्लैंड की महारानी सतयुग में आ सकेंगी, आप सब क्या समझते हो? मुझे से सवाल पूछा बाबा ने कि इंग्लैंड की महारानी सतयुग में आ सकेंगी, आप सब क्या मानते हो? जो समझते आएंगी वो हाथ खड़ा करें। इंग्लैंड की महारानी जो अभी वर्तमान में जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वो सतयुग में आ सकेंगी? नहीं आ सकेंगी ना, सभी बहने भी ना कर रही है। तो बाबा ने कहा अगर वो सतयुग में नहीं आ सकेंगे और आप सतयुग में आ सकेंगे? हमने कहा हम जरूर जाएंगे। तो बाबा ने कहा तो फिर आपका प्रारब्ध, आपका भविष्य इंग्लैंड की महारानी से श्रेष्ठ है या नहीं, बताओ आप सब क्या मानते हो? आप सब क्या मानते हो? हम सबका प्रारब्ध भविष्य इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल है कि वर्तमान समय की इंग्लैंड की महारानी से भी ज्यादा हमारा श्रेष्ठ भविष्य है। परंतु वो भविष्य को श्रेष्ठ और बनाना है। इंग्लिश में कहा होता है गुड बेटर बेस्ट। हमारा प्रारब्ध जो है भविष्य गुड है, बस उसको बेटर और इससे बेस्ट बनाना है। प्रजा में से हमको साहूकार का पद लेना है, साहूकार से आगे रॉयल फैमिली दैवी परिवार का जो राजा का परिवार होगा उसका सदस्य बनना है और उसके आगे विश्व महाराजा विश्व महारानी का पद लेना है। तो ये पद बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। उसके लिए कल ही अव्यक्त बाबा ने बहुत सुंदर संदेश में कहा, कल आपको मालूम है बाबा ने एक परीक्षा ले लिया। जो चिंतन करने वाले बहन भाई है उसको मालूम होगा कल बाबा ने एक बहुत सुंदर परीक्षा ले ली, सारे दैवी परिवार की परीक्षा ले लिया बाबा ने। बाबा परीक्षक भी है क्योंकि बाबा टीचर भी है, परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है। तो परम शिक्षक के रूप में कल बाबा ने एक परीक्षा ले लिया। कईयों को ध्यान में नहीं आया है ये परीक्षा क्या है। ये है परीक्षा परिवर्तन की चुनौती। वर्तमान समय में जो जो परिवर्तन होते हैं और उसकी जो चुनौती जो होती है उस चुनौती की परीक्षा बाबा ने ले लिया। कहीं जाने अनजाने उसमें पास भी हुए, कहीं जाने अनजाने उसमें संपूर्ण परीक्षा पास नहीं हुए। परिवर्तन होता ही रहता है, ये संसार ऐसा ही है। संसार शब्द संस्कृत है, सरतीति संसार, संसार जो बहता रहता है, जो परिवर्तनशील है, आगे आता ही रहता है। जैसे नदी जो होती है, नदी का पानी हिमालय में बारिश के रूप में गिरता है, फिर आगे चल करके पहाड़ों में घूमता है, घूमते घूमते फिर गंगा यमुना के मैदान में आता है और फिर जाकर के समुद्र को मिलता है। इस प्रकार से नदी का पानी भी सतत बहता रहता है, इस प्रकार से संसार भी जो है वो सतत बहता ही रहता है, परिवर्तनशील है। तो इसी के हिसाब से बाबा ने परिवर्तन की चुनौती शुरू से ही की हुई है। आपको मालूम होगा बाबा ने परिवर्तन कितना कितना किया हुआ है। पहले कराची में था आपको, अरे पहले हैदराबाद में था आपको मालूम है ना, यह विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? बाबा के हैदराबाद में बाबा का मकान था, जसोदा भवन, जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था और उसके नाम से बाबा ने वो मकान बनाया था और उसके अंदर एक 10x10 का कमरा में बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया। 10x10 के कमरे में, जैसे आज भी दादी ने नहीं कहा बीज, हम दान नहीं करते, हम अपना भविष्य के लिए बीज बोते हैं। इस प्रकार से बाबा ने 10x10 के कमरे में ज्ञान देना शुरू किया, 10x10 का। फिर संख्या बढ़ी तो बाजू के कमरे की जो दीवार थी उसको तोड़ दिया, तो इसलिए क्या बन गया कमरा, 20x10 का बना। ये परिवर्तन हुआ, पहला परिवर्तन यही हुआ कि 10x10 के कमरे से 20x10 का कमरा बना। उसके बाद फिर और संख्या बढ़ी तो बाबा ने ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पर 3 कमरे थे तो दूसरे कमरे की भी दीवार तोड़ करके 3 कमरों का 1 कमरा कर दिया, 30x10 का कमरा हो गया। ये दूसरा परिवर्तन हुआ। फिर संख्या और बढ़ गई तो क्या करे बाबा, तो बाबा ने क्या किया, जसोदा भवन के जो आंगन जो था, कंपाउंड जो था, उसके अंदर शतरंजी लगा करके वहां पर क्लास करना शुरू किया। आप सबने दादी प्रकाशमणि का अनुभव सुना हुआ होगा, जो पुराने बहन भाई बैठे हुए और दादी ने यही बताया कि जब दादी बाबा के पास गई है पहली बार तो बाबा कंपाउंड के अंदर ज्ञान सुना रहे थे, कंपाउंड के अंदर ही ओम शांति की धुनी बजती थी और उस कंपाउंड के अंदर ही दादी ने जाकर के बैठे और बैठे ही ध्यान में चले गए, सारे क्लास पूरा हो गया, सब चले गए। उसके बाद वो अपने ध्यान से कहो या तो साक्षात्कार से कहो नीचे उतरे और बाबा ने उनको ज्ञान दिया, सुनाया है। ये सारी बातें हैं, मतलब परिवर्तन कैसे हुआ, 1 कमरे से 2 कमरा 2 कमरे से 3 कमरा 3 कमरे से कंपाउंड में और फिर आगे बढ़ते गए, फिर समस्याएं आई, प्रॉब्लम आए और फिर बाबा हैदराबाद से कराची आए। ये भी परिवर्तन हुआ ना, हैदराबाद से कराची आना, बाबा को भी परिवर्तन करना पड़ा। और फिर कराची से क्या हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, कहीं उसके पहले भी यज्ञ छोड़ करके चले गए, कहीं यहाँ आने के बाद छोड़ करके चले गए। इस प्रकार से बाबा हमेशा ही, यह वृक्ष जो है ना, दैवी परिवार का वृक्ष, उसको हिलाता है, कहीं पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, क्या क्या होता है बाबा। इस प्रकार से परिवर्तन के साथ साथ परीक्षा का भी कारोबार करते हैं। और फिर हैदराबाद से कराची से माउंट आबू आए, काफी उसमें भी हलचल में आए। कहीं ऐसे हलचल में आते हैं, इसके कारण क्या होता है, बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं, कहीं भारत में आने के बाद कहीं चले गए, कईयों ने जाकर के अनेक प्रकार के अपने कारोबार को आगे बढ़ाया, अनेक प्रकार का अपना कारोबार आगे बढ़ा करके आगे बढ़े। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ भी आने के बाद क्या हुआ, हम ब्रिज कोठी में पहले रहे, ब्रिज कोठी से और जगह पर रहे, भरतपुर आउट कोठी और दूसरा मकान जो है उसके अंदर कोटा हाउस में रहे, कोटा हाउस के बाद जो है पांडव भवन में आए। पांडव भवन में बहने आने के लिए तैयार नहीं थी, कहते थे ये तो घोड़े का तबेला है, क्योंकि राजा जो था ना उसके पास घोड़े बहुत थे, और जहाँ ऊपर में यीशु दादी की ऑफिस है ना, वहां पर घोड़े लोगों को पानी पीने के लिए वो रखा हुआ था, उसमें घोड़े आकर के पानी पीते थे, तो इसलिए ऐसे स्थान पर भी बाबा ने आकर के शिफ्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, पांडव भवन के अंदर भी वृद्धि होती रही, पहले हिस्ट्री हॉल बना, हिस्ट्री हॉल बन करके वो हुआ, उसके बाद और परिवर्तन हुआ, और क्या हुआ, मेडिटेशन हॉल बना, उसके बाद क्या हुआ, तो सामने जो है ओम शांति भवन बना और उसके अंदर यूनिवर्सल पीस हॉल बन गया। ये परिवर्तन होता रहा, परिवर्तन होते के साथ संस्था बड़ी होती गई, और उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ, दादी बाबा ने सभी बहनों को ईश्वरीय सेवा अर्थ देश में भेजे, कहीं अहमदाबाद गए, कहीं दिल्ली गए, कहीं बॉम्बे गए, कहीं बेंगलोर गए, इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। और जो परिवर्तन के साथ साथ अपने में परिवर्तन लाते गए वो आगे बढ़ते रहे, और जो नए परिवर्तन के साथ साथ तालमेल नहीं कर सके, और नए परिवर्तन की जो चुनौती जो थी, जो वो प्रश्न था, उसके साथ तालमेल नहीं कर सके, तो बाबा का हाथ छोड़ करके लौकिक दुनिया में चले गए। और जो साथ में रहे इसका क्या हो गया, कहीं हैदराबाद गए, इसके बढ़ते 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 क्या हुआ, देखो दादियां बन गई। आज हमारी दादियां भी मुख्य तो तीन चार दादियां ही रही है, बाकी हमारी दादी पुष्प शांता, ब्रिजेंद्रा दादी, ऑलराउंडर दादी, आदि आदि जो भी हमारी गंगे दादी, उस प्रकार से सब दादियां जो है एडवांस पार्टी में चली गई। और इसके आधार पर क्या हुआ, बाबा ने और भी आगे कारोबार बढ़ाया, बाबा खुद अव्यक्त हो गए, मातेश्वरी भी खुद अव्यक्त हो गई, और फिर भी कारोबार बढ़ता रहा। 71 में बाबा ने विदेश की सेवा शुरू कराई, और विदेश की सेवा बढ़ती गई, और आज आप जानते हैं देश विदेश में 136-138 देशों में भी बाबा की सेवा बढ़ती गई। इसका मतलब क्या, परिवर्तन होता रहा, सेवा में परिवर्तन हुआ, पुरुषार्थ में परिवर्तन हुआ, साधन में भी परिवर्तन हुआ, परंतु साधना में बाबा ने परिवर्तन नहीं किया। साधना यही है कि हमको श्रेष्ठ प्रारब्ध अपना बनाना है, ये हमारी साधना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा पुरुषार्थ है, सबको श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना है ना, सब चाहते हैं कि हमारा प्रारब्ध श्रेष्ठ बने, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए देश विदेश के अंदर जो सेवाएं हुई, दादी जानकी ने आज नहीं कहा, 4 साल तक लंदन में रहना पड़ा, मैं उस टाइम पर लंदन में था, 74 में 8वीं अप्रैल को जो है, अभी भी मुझे वो डेट याद है, 8 अप्रैल को यहाँ से निकले हैं, और 8 अप्रैल रात शाम को दादी जी लंदन में पहुंचे हैं। दादी जी और जयंती बहन थे, हम लोगों को वहां पर इंडिया कॉफी हाउस में प्रदर्शनी करनी थी, तो प्रदर्शनी के चित्र आदि लेकर के, और उसमें एक गोला बनाया हुआ था जो बॉम्बे से हमने बना करके दादी को दिया था, एक गोला लेकर के जाओ, और विश्व का गोला जो है, अर्थात विश्व की ईश्वरीय सेवा के अर्थ दादी जी जो है विश्व सेवा के लिए निकली हुई है। वो दादी जी कस्टम से, एक्साइज से और इमिग्रेशन से निकल हुए, और वो अपनी जो भी ट्रॉली जो है उसको धकेलते आ रहे थे, हमने वो देखा। दादी इस प्रकार से विश्व सेवा अर्थ बाबा के कहने पर वहां गई। ये दादी के जीवन में भी ये परिवर्तन की चुनौती थी, और उसके बाद दादी जी ने भी वहां लंदन में भी सेवा बढ़ाई। सेवा बढ़ाते बढ़ाते पहले वहां पर टेनिसन रोड में एक 96 टेनिसन रोड में सेंटर था, उसके बाद बाजू का ही मकान ले लिया, 96-98 टेनिसन रोड बन गया। उसके बाद और मकान लेते गए, बाबा भवन बनाया, अभी उसके बाद आगे चलकर गए और डरन हिल में जो गवर्नमेंट का म्यूनिसिपालिटी का हॉल था वो लिया, उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बनाया, उसके बाद आगे बढ़ते गए ऑक्सफोर्ड के अंदर वो लिया, अपने रिट्रीट हाउस लिया, और उस प्रकार से सेवा बढ़ती गई। मोहिनी बहन आदि ने अमेरिका जाकर के सेवा किया, बहुत कुछ हो गया। हमारे निर्मला बहन आदि ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेवा किया, हमारी सुधा बहन, संतोष बहन आदि ने जाकर के रशिया में सेवा किया। आज भी रशिया के अंदर 42 स्थानों पर ईश्वरीय सेवा चल रही है, 42। और आप सबको मालूम नहीं होगा, सबसे ज्यादा में ज्यादा प्रतिदिन आने वाले स्टूडेंट की संख्या मॉस्को में है और सेंट पीटर्सबर्ग में है। रोज के 400 स्टूडेंट रोज आते हैं, रोज 400 स्टूडेंट आते हैं। वहां तो ठंडी इतनी होती है, वो सब कुछ होते हुए भी ठंड होती है, सब कुछ होते हुए भी रोज के 400 स्टूडेंट आते हैं। इतने 400 स्टूडेंट तो भारत में मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा सेंटर होगा जो प्रतिदिन सुबह के क्लास में, सारे दिन के क्लास में नहीं, सारे दिन की गिनती नहीं है, परंतु सुबह के ही क्लास में 400 स्टूडेंट हो, और ऐसे मतलब आते हैं, अपना कारोबार करते हैं, करके चले जाते हैं और करके परिवर्तन की चुनौती कैसे स्वीकार करते हैं। लंदन के भाइयों का, बहनों का मैं आपको बताऊं, आप सब कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं है। आप सबसे ज्यादा मेहनत वो लोग करते हैं। पैसा तो हर जगह पर इतना ही महंगा है जितना भारत में महंगा है, इतना ही वहां भी महंगा है। उन हर एक के पास क्या होता है, ब्रेड बनाने का मशीन होता है, $100 में आता है। हमारे पास भी ब्रेड मशीन बनाने का मशीन है। शाम रात को जो है सोते टाइम पर उसके अंदर आटा आदि जो है ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट आदि जो डालना पड़ता है वो डाल करके उसमें टाइमर होता है। तो टाइमर के हिसाब से 11 बजे रखा हुआ है, सुबह 4 बजे ब्रेड हो जावे, सुबह 4 बजे ब्रेड हो जावे, इस प्रकार का मशीन में टाइमर रखा हुआ होता है। सुबह 4 बजे योग के लिए उठते हैं, उस टाइम पर जो है 4:15 बजे जाकर के वो उसमें से ब्रेड निकाल देते हैं और दूसरा मसाला जो है आटा आदि जो डाल करके 3 घंटे का टाइम रख देते हैं, 3-4 घंटे का। और फिर जो ब्रेड सुबह का जो होता है और स्नान पानी कर करके उसके लिए अपना बना लेते हैं कारोबार और फिर क्लास में जाते हैं। क्लास में जाकर के आते हैं तब तक क्या होता है, जो बनाया हुआ है सुबह 4 बजे का ब्रेड है उसके सैंडविच आदि बना लेते हैं और उसके आधार पर नाश्ता हो जाता है। और जो सुबह 4 बजे ब्रेड की बनाने की मशीन में आटा आदि डाला हुआ है उसको 7 बजे 7:30 बजे घर पे जब गए तो वहां पर वो ब्रेड निकाल देते हैं, उसकी सैंडविच बना करके दोपहर के लंच के लिए घर ऑफिस में लेके जाते हैं। और जल्दी जल्दी वहां 8 बजे तो नौकरी पर पहुंचना पड़ता है। हिंदुस्तान में तो इतनी छुट्टियां मिलती है, इतनी वहां छुट्टियां नहीं होती है। सारे साल में यहाँ हिंदुस्तान में नौकरी करते वाले को 1 महीने की छुट्टी मिलती है, वहां 15 दिन की छुट्टी मिलती है। और सुबह 8 बजे पहुंच जाना पड़ता है और वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो ब्रेड जो लेके जाते हैं ना उसका दोपहर में लंच करते हैं और सुबह 8 बजे जो ब्रेड निकाला उसके अंदर फिर आटा आदि डाल देते हैं और फिर टाइम रख देते हैं शाम का 5 बजे का। तो जैसे ऑफिस से छूट करके घर पे आते हैं तो 5 बजे का जो ब्रेड जो है उसको निकाल देते हैं और उसके आधार पर रात का डिनर करते हैं और उसके अंदर फिर आटा डाल देते हैं, दूसरे दिन सुबह जो है 4 बजे मिल जावे और उसका नाश्ता करते हैं। इस प्रकार से इतना व्यस्त जीवन होते हुए भी, वहां का इतनी महंगाई वाले जीवन में होते हुए भी अपना पुरुषार्थ करते हैं, इतना पुरुषार्थ। और इनके लिए देखिए उनके वर्तमान की चुनौती कैसी है, भाषा अलग, भाषा अलग, अंग्रेजी भाषा यहाँ तो अलग प्रकार, कोई स्पेनिश, कई प्रकार की भाषाएं होती है। आपको मालूम होगा हमारे यहाँ पर भी इतनी भाषाओं का भाषांतर होता है, वहां पर भी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि आदि भाषाएं जो है, इन सब भाषाएं अलग, धर्म अलग, संस्कृति अलग, भाव और उनके रहने करने की स्टाइल अलग, सब प्रकार की बातें अलग होते हुए भी बाबा के दैवी जीवन के आधार पर ब्राह्मण संस्कृति को अपना करके, ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ जीवन समझ करके अपना जीवन का कारोबार करते हैं। हमारे लिए तो बहुत सहज है क्योंकि हम यहाँ जानते हैं शिव कौन है, शंकर कौन है, कृष्ण कौन है, राधा कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, राम सीता कौन है, हम सब जानते थे न। ज्ञान में आए उसके पहले भी आपको इन सब का ज्ञान मालूम था और ये विदेश के बहन भाइयों को कुछ मालूम नहीं था, शिव किसको कहते हैं मालूम नहीं था, कुमार किसको कहते हैं, कुमारी किसको कहते हैं वो भी मालूम नहीं था। हमारे पास कई विदेश के बहन भाइयों का पत्र आता है, कुमार कुमारी का डिफरेंस समझ में नहीं आता इसलिए लिखते हैं ब्रह्मा कुमारी रमेश भाई। बोलो, मैं समझ जाता हूँ क्योंकि उनको कुमार और कुमारी के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। एक विदेश के बहन ने मेरे को कहा कि अपने 8-10 साल पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि अपनी संस्था के 2 हेड है, अपने विश्वविद्यालय के 2 हेड है। मैंने कहा अच्छा, बताओ कौन कौन 2 हेड है, तो कहा एक दादी कुमार का और एक दादी प्रकाशमणि। आपने समझा, एक दादी कुमार का और एक दादी प्रकाशमणि, ऐसे संस्था के 2 हेड है। मतलब भारत की बातों को तो यहाँ पर निक नेम दूसरा होता है, कुमार का दादी का नाम, कुमार का वो जो है बाबा ने लाड कोड में रखा हुआ है, प्रकाशमणि ऑफिशियल नाम है, वो मालूम बिचारों को नहीं होता है, वो कहते 2 हेड्स हैं। ऐसी परिस्थिति में रहते हुए भी कितना सुंदर पुरुषार्थ करते हैं। अभी भी यहाँ पर पिछले टाइम 18 अक्टूबर को बाबा के मिलने के लिए उनका भी प्रोग्राम था, वो आए। तो कल की बाबा की परीक्षा में भारत के कई बच्चे फेल हो गए। कई बच्चे पहले कहते थे कि हमको ना बोलते थे कि हर बार नहीं आओ, क्योंकि यहाँ 15-20-25 हजार लोग आते हैं, इनको रहने का इतना प्रबंध नहीं है, हमको कहीं भी कई बार टेंट में रखना पड़ता है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं। तो कहते हैं नहीं, हम बाबा की सीजन में हर बाबा के टर्न में आएंगे। ऐसा उनका दृढ़ संकल्प होता था। और कल क्या हो गया, कल क्या हो गया, कहीं जो है ना जो रेगुलर आने वाले जो है ना आए नहीं, कि बाबा नहीं आने वाले इसलिए हम नहीं आते, बाबा नहीं आने वाला इसलिए हम नहीं आते। और आप सब जो है बाबा नहीं आने वाले तो भी आप आ गए, आप सब पास हो गए, और जो नहीं आए वो फेल हो गए। ये मैंने कहा ना बाबा सूक्ष्म परीक्षाएं लेते हैं, कईयों को मालूम नहीं था कि बाबा ने चलते चलते परीक्षा ले लिया, एक सेकंड की परीक्षा होती है। और आपको मालूम है बाबा ने एक अव्यक्त मूर्ति में कहा है अंतिम परीक्षा एक सेकंड की होगी, एक सेकंड की परीक्षा में जो पास हो गए वो बिंदीधारी बनेंगे, और एक सेकंड की परीक्षा में जो फेल होंगे वो चिंदीधारी बनेंगे। ऐसी सूक्ष्म परीक्षाएं बाबा लेता है। और मैं बाबा को हमेशा ही कहता हूँ बाबा माया परीक्षा लेती है, दुनिया वाले परीक्षा लेते हैं, बाकी सब परीक्षा लेते हैं, आप क्यों लेते हो? तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आप बच्चे बाजार में मटका खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो भी आप देखते टक टक करके देखते हैं, टक करके देखते हैं कि इसमें से पानी बह तो नहीं जाएगा, उसमें कोई सुराग तो नहीं है। और इस प्रकार से एक मटका लेने में भी आप इतनी खातरी करते हो, ध्यान रखते हो, तो मुझे तो आप बच्चों में से ही 21 जन्मों सत्यु की दुनिया के लिए विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने वाले बच्चों को चुनना है, तो मैं क्यों परीक्षा नहीं लूं? तो मैं भी परीक्षा लेता हूं, बाबा की भी परीक्षा है। तो कल की परीक्षा के अंदर मैंने हंसते हंसते कहा, हमारे बॉम्बे से आज सुबह फोन आया कि कल की परीक्षा में जो नियमित हम आएंगे बाबा के हर समय पर आएंगे। आपको मालूम है बाबा ने 16 तारीख को 17 तारीख को बाबा ने संदेश भेजा था कि मैं तो आने वाला हूँ, आप बच्चे हो गए या नहीं ये प्रश्न है। और बाबा ने कहा कि जो बच्चे आएंगे और जिन्हों को, और कल भी मुरली के अंदर जो है अव्यक्त मिलन मनाने की रीति के ऊपर बाबा की मुरली थी, आपको मालूम होगा राजस्थान के ग्रुप के साथ बाबा ने जो पुरानी मुरली रिपीट हुई, तो अव्यक्त मिलन मनाने की बाबा ने कहा जिन्हों को अव्यक्त मिलन मनाने की हैबिट होगी, अभ्यास होगा, जो कर सकेंगे वो अव्यक्त मिलन मनाएंगे, तो मैं उनके साथ अव्यक्त मिलन अवश्य मनाऊंगा। तो क्या करें, हमारे कई बहन भाई जो है ना अव्यक्त मिलन कैसे मनाया जाए उसकी विधि नहीं जानते थे, और इसके कारण क्या हुआ, कल जो है अगर बाबा तो आने वाले नहीं है तो इसलिए नहीं आओ, और जो आए उनके लिए क्या हुआ, बाबा ने संदेश जो भेजा गुलजार दादी के द्वारा, मैं लाया हूँ वो संदेश, हमको रात को मिल गया। उसमें बाबा ने कहा कि बाबा ने सारी सभा को देखा, आए आए ना कल संदेश सुना है ना सबने, सारी सभा को देखा। तो इसलिए बाबा सारी सभा को देखा, तो उसमें क्या होगा, बाबा ने रिजल्ट नहीं बताया, क्योंकि बाबा बहुत ध्यान रखते हैं हम बच्चों की अवस्था को, तो इसलिए बताया नहीं बाबा ने कि जिस सभा में जो ऐसे हमेश के लिए कहते हैं हम महारथी है, हम हर एक सभा में आएंगे, हर मिलन के समय पर आएंगे, कहीं उसमें से नहीं थे तो क्या हो गया होगा, जो सभा में नहीं थे, जो कहने वाले थे कि हम हर समय में आएंगे, हम मना करते थे बाबा के मार्च महीने में 25-30 हजार लोग हो जाते हैं, उस टाइम पर हम कहते हैं कि रेगुलर आने वाले नहीं आवे, तो फिर क्या हो जाता है, आपको मालूम है एक बार क्या हो गया, यहाँ पर आबू में ऊपर जो था ना ओम शांति भवन में जो हॉल है यूनिवर्सल पीस हॉल, तो उसमें बाबा आने वाले थे 2-3 दिन के लिए, तो पर तो बहुत लोग आने वाले थे, और उस टाइम पर हमारे पास इतनी रहने करने की जगह नहीं थी, रहने करने की जगह नहीं थी, तो दादी के कहने पर हम लोगों ने दादी के साथ राय करके सर्कुलर भेजा कि यहाँ पर बाबा बाबा आने वाले हैं, परंतु संख्या बहुत है, रहने करने का इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए छोटे बच्चे नहीं आवे। क्या लिखा हमने? छोटे बच्चे नहीं आवे। तो सबको सर्कुलर चला गया, तो गया तो एक बच्चा जो था ना, बहुत होशियार था, उसने दादी को पत्र लिखा। देखिए बच्चे भी, हाँ छोटे बच्चे को हाँ छोटा मत समझो, छोटे बच्चे गीत भी है ना, छोटा बच्चा समझ करके हमको ना करना ऐसा कुछ, जब गीत भी है, सिनेमा का गीत है, छोटे बच्चे समझ कर। तो ऐसे हम लोगों ने तो लिखा छोटा बच्चा नहीं आ रहे। एक बच्चे ने पत्र लिखा दादी को कि दादी जी, मैं समझता था कि मधुबन में पांडव भवन में रहने वाले बाकी तो सब देह अभिमानी है, पर तो मैं समझता था कि आप देही अभिमानी होंगे, पर तो आपका पत्र पढ़ करके हमको लगा कि आप भी हमारे देह को देखते हैं, हमारी आत्मा को नहीं देखते। हमारा देह छोटा है पर हमारी आत्मा छोटी नहीं है। आप याद दीजिए, आपको मालूम रहे, याद रहे, आप और हम परम धाम से साथ में ही सृष्टि पर आए थे, परम धाम से साथ में ही सृष्टि पर आए थे। पिछले जन्म तक हम एक साथ में ही थे, पर पिछले जन्म में क्या हो गया, आपने जल्दी शरीर छोड़ दिया, इसलिए इस जन्म में आप जल्दी आ गए और अब दादी बन गए, और हमने पिछले जन्म में ज्यादा समय लगा दिया, इसलिए हम इस जन्म में बच्चे रह गए। इसलिए आप हमको मना नहीं कर सकते, आप और हम अगर हमारी आत्मिक आयु को आप देखेंगे तो आपकी और हमारी आयु एक समान है, इसलिए आप हमको मना नहीं कर सकते। तो दादी जी ने मुझे पत्र दे दिया। दादी ने कहा, देख रमेश, तेरे कारण मुझे, मैं देह अभिमानी हूँ, उसका टाइटल एक छोटे बच्चे ने दे दिया। मैंने कहा, दादी हम भी क्या कर सकते, इतने जगह लोग आने वाले हैं तो क्या करें। तो दादी ने कहा, देखो ऐसे होता है, हाँ तो बच्चों में भी अक्ल होती है, हाँ देह अभिमानी किसको कहे, देही अभिमानी किसको कहे, इसलिए हाँ कल के परीक्षा का परिणाम रिजल्ट में यही रहा, हाँ कि ऐसे जो भी अपने आप को महारथी समझने वाले जो नहीं आए, मेरे ख्याल में तो एक छोटी सी परीक्षा में वो इतने सफल नहीं हुए। बाकी कल बाबा ने जो मुरली कही न, जो प्राप्तियां जो है, इस प्राप्तियों के ऊपर अवश्य ध्यान रखो, कितनी प्राप्तियां हैं, ये यज्ञ के अंदर आते हैं, बाबा के बनते हैं, तो कितनी प्राप्तियां होती है, हाँ बाबा ने कल बताया ना, प्राप्तियों की लिस्ट बना करके उस प्राप्तियों के पीछे उसके आधार पर अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। प्राप्तियां जो यहाँ होती है, जो सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, आदि आदि जो भी है, ऐसे दिव्य गुणों की प्राप्ति, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति, दिव्य अनुभवों की प्राप्ति, परमात्मा के साथ दिव्य संबंधों की प्राप्ति, ये सब प्राप्तियां इतनी यहाँ होती है, हाँ तो उसको याद रखो और उसको याद करके आगे बढ़ो। और कल दूसरी बात बाबा ने मुरली में बताई ना, मालूम है ना आपको सबको, एक्सरसाइज करने को बताया, पांच धाम की यात्रा कराई, कि परम धाम से निकले हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर द्वापर युग में आए, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता दैवी परिवार के सदस्य बने, फिर फरिश्ता बन करके फिर परम धाम जाएंगे। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करने के लिए कल बाबा ने कहा, पुरानी मुरली थी उसके अंदर ये बात आई है, एक्सरसाइज करने के लिए। और बाबा ने कहा, कम से कम 8 बार ये एक्सरसाइज करिए, कहा है ना, 8 बार एक्सरसाइज। हाँ पर तो क्या करें, हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और नहीं निकाल पाते इसके कारण क्या होता है, एक्सरसाइज नहीं करते। बाबा ने कहा, शरीर की एक्सरसाइज सब करते हैं, परंतु मन की भी एक्सरसाइज है, मन को भी तंदुरुस्त रखना है, बुद्धि को भी तंदुरुस्त रखनी है। मन और बुद्धि के जो खोराक, जो खाना जो है, वो मिलना ही चाहिए। आज हमारे सबके मन जो है ना निर्बल जो है, शरीर भी हो गया है तो हमारा मन भी जो है निर्बल हो गया है, और इसके कारण क्या होता है, विचार सागर मंथन नहीं कर सकता। विचार सागर मंथन करके, ज्ञान के विचार सागर मंथन करे, जो कल बाबा ने कहा प्राप्तियों का विचार सागर मंथन करो, इस प्रकार का विचार सागर मंथन का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कल जो बाबा ने कहा ना, कि वर्तमान की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करो और मन को इस प्रकार से ज्ञान के अंदर मंथन में बिजी रखो। आप सब जानते हैं दादी जानकी बहुत बिजी रहती है, बराबर है, बहुत बिजी रहती है। परंतु दादी जितना भी हमारा साहित्य छपता है, जो भी पत्र आते हैं, खुद को देखती भी है, रात को सोने से पहले सभी पत्रों का जवाब दे देती है, सभी का जो भी प्रश्न आया, जो भी बातें आई, और उसके अलावा खुद भी अपने प्रवचनों के जो भी क्लास कराते हैं उसकी भी किताबें छपवाती है, बहुत कुछ करती है। और जितना भी मैगजीन छपता है वो मैगजीन आदि सब हिंदी में होते हैं तो पढ़ लेती है, अंग्रेजी में होता है तो उसका भाषांतर सुनाती है, सुनती रहती है। इस प्रकार से अपने आप को, अपने मन को ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति में, इन सब में व्यस्त रखती है। हम क्या करते हैं, दुनियावी बातों में अपने आप को ज्यादा रखते हैं, टीवी देखते हैं, क्या क्या करते हैं, अनेक प्रकार की समस्या, इसके घर में ऐसा हुआ, इसके बाहर ऐसा हुआ, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चों का समय ज्यादा किसमें जाता है। मैंने मुझे पूछा मालूम है बच्चा, हम बच्चों का समय किसमें ज्यादा जाता है, मैंने कहा नहीं सेवा में जाता है। कहा नहीं बच्चे तुमको क्या मालूम, हमेशा बाबा कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। बाबा ने कहा कि बाप जानता है कि ज्यादा करके बच्चों का समय, मैं शब्द बोलूं बाबा का, जड़ मुही जंग मुही, इस प्रकार से ऐसी फालतू बातों में ही ज्यादा समय जाता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और क्या होता है वो बातें पीछे भूतकाल की बातें जो है वो भूल नहीं सकते, और उसके कारण क्या होता है, हर एक के सामने वो भूतकाल की बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं। बाबा ने तो कहा हुआ है भूतकाल को बिंदी लगाओ, कहा है ना भूतकाल की बातों को बिंदी लगाओ, क्योंकि हर एक पुरुषार्थी है, हर एक आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। हम भी पहले कैसे थे, हमारे पर बाबा ने देखा, हमारी हमको बाबा ने जब देखा, अगर हमारे वो तमो प्रधान व्यवहार जो था, रावण के राज्य में थे, माया के अधीन थे, ऐसे समय के पुरुषार्थ को या ऐसे समय के हमारे जीवन को देख करके बाबा क्या कर सकते थे। बाबा ने उसको नहीं देखा, और हम बच्चों के भविष्य को देखा कि भविष्य में ये ऐसे होने वाले हैं, इस प्रकार से ऐसे भविष्य को देखते हुए भूतकाल को छोड़ करके वर्तमान में श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को अपना लिया, अपना बच्चा बना लिया। तो इस प्रकार से हमें भी अपना जीवन के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि भूतकाल को भूल करके वर्तमान के आधार पर सामने वालों के साथ व्यवहार करना चाहिए। दादी जानकी का एक बहुत सुंदर क्लास था कि भूतकाल के ऊपर फुल स्टॉप कैसा लगाना चाहिए, इतना पावरफुल फुल स्टॉप लगाओ कि वो भूतकाल की बातें इस जन्म में, वर्तमान में या भविष्य में कभी याद ना आवे, और अगले कल्प में 5000 वर्ष के बाद ही वो चीज फिर से याद आवे, इतने तक उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए। 3 बिंदी बाबा ने जो कहा है ना, हमारा गीत भी है, बिंदी लगाने का गीत है। एक तो मैं आत्मा हूँ बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, और जो ड्रामा जो है, जो चीजें बनती है उसके ऊपर भूतकाल, उसके ऊपर बिंदी लगा करके उसको भूलो। परंतु क्या होता है कि हम भूतकाल को भूल नहीं सकते, और भूतकाल के आधार पर औरों के जज करते रहते हैं, और उसके परिणाम रूप क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष आदि आदि जो भी होता है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम भूतकाल के आधार पर औरों को जज करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नहीं, हम पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे लाएंगे, हमारे पास बॉम्बे में, हमारे घर में, हमारे साथ में मातेश्वरी जी 18 मास रहे थे, तो मैंने मातेश्वरी जी को पूछा कि आपके पहले भी और भी बहने थी, यज्ञ चलता था, आपको मालूम होगा मम्मा को 7 दिन का कोर्स कराने वाली एक बहन थी, किकनी बहन करके थी, वो किकनी बहन जो थी वो मम्मा की टीचर थी, और मम्मा से पहले भी कई बहनें आ चुकी थी, और बाद में मम्मा आई, तो हमने कहा कि मम्मा आप जो है, आपने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जिसके आधार पर आप जो है आपसे आगे पहले आए हो, इन सबसे आगे बढ़ करके श्री लक्ष्मी का पद आपने हासिल कर दिया, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ था। तो मम्मा ने कहा कि सोचने लगी, कहा सभी प्रकार का पुरुषार्थ था। हमने कहा नहीं, कौन सा ऐसा एक विशेष पुरुषार्थ बताओ कि जिस पुरुषार्थ के आधार पर आप इतने आगे बढ़ करके सबको ओवरटेक कर करके आगे चले गए। तो मामा ने दो चार मिनट सोचा कि कौन सा ऐसा एक पुरुषार्थ मैं बताऊं, और उसके आधार पर मामा ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा एक जो गुण जो है मैंने नक्की रखा है, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प करने का मैंने जो दृढ़ निश्चय किया है, और दृढ़ संकल्प के आधार पर क्या हुआ कि एक बाबा जो है हम कराची में क्लिफ्टन पर रहते थे और मातेश्वरी आदि सोल्जर बाजार में रहते थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस था 4-5 माइल का। तो इसलिए बाबा रोज सोल्जर बाजार में रहने वालों को मिल नहीं सकते थे। तो उसके कारण एक दिन मम्मा को बहुत रोना आ गया। हाँ, तो मम्मा ने मुझे मम्मा ने ही बताया, इतना मैं रोई मम्मा ने कहा कि मेरा जो तकिया होता है ना पिलो, वो भी भीग गया। तो बाबा को मालूम पड़ गया कि कल रात को मम्मा इतना बाबा की याद में उसने रोया हुआ है। तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और मम्मा को ज्ञान दिया कि मम्मा ये रोना अच्छा नहीं है। हाँ, रोना कौन करता है? बाबा ने आपके मुरली में आपको मालूम होगा ना, रोना कौन करता है? और जो विधवा होती है, बाबा ऐसा सिंबॉलिक कहते हैं, हाँ वो रोती है। तो तुम तो सिद्धवा नहीं है, तुमको तो बाप मिल गया है, परमात्मा मिल गया है, वो तुमको रोना नहीं चाहिए। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है बाबा। मम्मा ने बाबा के सामने ही दृढ़ संकल्प किया कि आज से इस आंखों से कभी भी आंसू नहीं बहेगा, ये दृढ़ संकल्प किया। तो मम्मा ने ये बताया था, तो हमने हमारे क्लास में बता दिया सबको कि मम्मा का ये दृढ़ संकल्प है। तो इतने में क्या हुआ, कानपुर से मम्मा को निमंत्रण आया, वो माँ प्यारी माँ ऐसा जो गीत जो है आप सबने, जो पुराने बहन भाई होंगे उनको मालूम है, हम मातेश्वरी की याद में बने हुए गीत है, सिनेमा के ही गीत है। तो निमंत्रण आया, 2-3 बार हमने वो 2-3 गीत जो है बजाए, हम सबकी आंखों में भी हाँ पानी आ गया, पर मम्मा की आंखों में पानी नहीं आया। तो हमने मम्मा को कहा, मम्मा आपको क्यों आंखों में पानी नहीं आता है? कहा, मैंने बाबा के सामने एक दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा किया है कि इस जन्म में हाँ संगम युग के बाकी के समय में मेरी आंख से हाँ पानी अश्रु बिंदु नहीं बहेगा। तो इतना दृढ़ संकल्प करते थे, और हम क्या करते हैं, हम दृढ़ संकल्प तो करते हैं परंतु क्या होता है। हाँ, बाबा ने कल आज की मुरली में भी है, हाँ कि बाहर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ तो दृढ़ संकल्प करते हैं, हम ये करेंगे, सेवा के संकल्प बना रहते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, और बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हाँ सोडा वाटर हो जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, हाँ आबू में एक कुआ है जो पांडव भवन से पीछे जो रास्ते से ऊपर जाते हैं ना, एक कुआ आता है, जो पुराने बहन भाई जो है माउंट आबू को और पांडव भवन को अच्छी जैसे देखा हुआ होगा उसको मालूम होगा, उस कुआ का नाम है उसका पानी को कहते हैं सोडा वाटर वेल। तो एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे जो है ना यहाँ से बाहर जाते हैं तो सोडा वाटर हो जाता है। तो मैंने हाथ खड़ा किया, बाबा उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमको जो यहाँ पानी पिलाते हो ना वो सोडा वाटर वेल का पानी होता है, तो हम सोडा वाटर हो जाते हैं, हम क्या करें। आप समझे मेरी बात को? नहीं समझे इसलिए कोई हंसा नहीं है। सोडा वाटर वेल का पानी पीएंगे तो हम सोडा वाटर हो जाते हैं, इससे जैसा पानी ऐसी वाणी हो जाती है, इस प्रकार से जैसा असंग ऐसा रंग हो जाता है, जैसे पानी ऐसी वाणी, तो इसके कारण पानी ऐसा मिलता है यहाँ सोडा वाटर वेल का, तो हम सब सोडा वाटर हो जाते हैं। तो बाबा हंसने लगे कि बच्चा वकालत अच्छी करता है। मैंने कहा बच्चे सोडा वाटर हो जाते हैं, तो बच्चा ने मेरे को ही कहा कि बाबा आप पानी यहाँ ऐसा पिलाते हो सोडा वाटर वेल का, तो हम सोडा वाटर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि दृढ़ संकल्प होना ही चाहिए, दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसलिए वर्तमान के पुरुषार्थ के अंदर एक बात नक्की करें, जो बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिया हुआ उसके आधार पर आगे का कारोबार हमको करना ही चाहिए। और भी कहीं बाबा ने कल मुरली में बातें कही है। एक दूसरी बात जो थी, बाबा ने दूसरी बात जो कही है, एक्सरसाइज की बात कही, वो आप सबने नोट किया। और उसके साथ साथ दूसरी बात भी कही है कि जिस यज्ञ जो है जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है और जो नए नए साधन यहाँ पर ईश्वरीय सेवा के मिलते हैं और साधना के भी मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साधना के लिए नया शब्द बाबा ने पिछले साल बताया, ज्वालामुखी योग, याद है ना सबको, ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग की बाबा ने बात तो कही, कौन कौन करते होंगे, कितने करते होंगे, तो ये साधना में भी बाबा परिवर्तन कराते हैं। तो साधना में जो परिवर्तन कराते हैं उसके आधार पर हमको भी अपनी साधना में परिवर्तन करना चाहिए। जो नए नए साधन बाबा देते हैं उसको अपनाते हैं तो क्या होता है, ये नए साधन के द्वारा पुरुषार्थ तीव्र गति से हो सकता है। और जैसे नए नए साधन दिए बाबा ने, इसी प्रकार से नई नई साधना बताई, उसी प्रकार से बाबा नए नए साधन भी देते हैं। नए नए साधन के आधार पर कितना कारोबार आगे बढ़ता है वो आप सब जानते हैं। अब क्या हुआ, पहले हमको मालूम है 62 में बॉम्बे में रक्षाबंधन का प्रोग्राम था, तो दादी निर्मल शांता जी हमारी टीचर थी, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी सेवा की और हम भी सेवा के अंदर रहे नए थे। 61 में एकदम बाबा के सेवा में आ गए थे, उसके पहले कोऑपरेटिव सोल सहयोगी आत्मा थे और राजयोगी सोल 61 से बने। तो दादी निर्मल शांता ने कहा कि कितने लोग फंक्शन करना चाहिए, हमने कहा फंक्शन करना चाहिए, दादी ने कहा कितने लोगों का बुलाएंगे, तो हमने कहा कि 5-7 हजार लोग होंगे, ऐसे बड़ा फंक्शन करें, 5-7 हजार लोग आएंगे, उसको एक साथ में संदेश दे देंगे। तो दादी निर्मल शांता ने कहा कि आपको मालूम है अपने ज्ञान के प्रवचन में 2 से 3 भी नहीं होता है, 3-4 ही होते हैं। मैंने कहा वो भी मुझे मालूम है, मैंने कहा माधोबाग में दादी जानकी दादी मनोहर इंदिरा का भाषण था तो मैं गया था, तो 3 लोग ही थे, 2 बाहर के थे और 1 मैं घर का था। तो इस प्रकार से ऐसे तीनों के सामने भी ऐसे भाषण करती थी मनोहर इंदिरा दादी कि जैसे कि सामने 3 के बदले में 30 हजार की सभा हो। तो मैंने कहा कि 3 है परंतु आप फिक्र नहीं करो, हम 5-6 हजार का भी ऑडियंस होगा, हम इतना संभाल देंगे। तो दादी ने कहा कैसे होगा, मैंने कहा आप हमारे पर विश्वास करो। फिर 1,350 का हॉल ले लिया किराए पर, वो भी दोपहर में 3 बजे रक्षाबंधन के दिन। हमने कहा अर्जा नहीं दादी, 350-350 लोग तो 1 सेकंड में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्राम बनाया, कार्ड छपाया, उसमें डायलॉग रखा, ड्रामा रखा, डांस रखा और फिर लास्ट में लिखा डिस्कोर्स। इस प्रकार से कर किया, बहुत सुंदर प्रोग्राम हो चुका। इस प्रकार से बाबा ने साधन में भी परिवर्तन कराया, फंक्शन रखवाए, प्रदर्शनी रखवाई। प्रदर्शनी के आधार पर आप जानते हैं, प्रदर्शनी के आधार पर स्लाइड शो निकला, उसके बाद मूवी कैमरा निकला, मूवी फिल्म निकली, राज्यों की फिल्म बनी, ऐसे ऐसे उसके आधार पर विदेश का निमंत्रण मिला, विदेश की सेवा शुरू हुई। इस प्रकार से साधनों के द्वारा सेवा बढ़ती रही, वो हकीकत है। और जिन बहन भाइयों ने नए नए साधनों का ईश्वरीय सेवा में उपयोग किया उनके यहाँ सेवा बढ़ती रही, और जिन्होंने नए साधनों को अपनाया नहीं, इनके पास सेवा जो है ना वैसी की वैसी रही। कई सेंटर जो है एकदम आगे बढ़ गए और कई जो है वहां के वहां ही रहे हुए हैं। जैसे कोल्हू का बेल होता है ना, वो वहां ही घूमता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। वहां प्रवृत्ति बहुत होती है परंतु प्रगति नहीं होती है। प्रश्न ये है हमारी प्रवृत्ति कितनी बड़ी है वो नहीं, परंतु हमारी प्रगति कितनी हुई है और प्रगति की रफ्तार क्या है, किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रदर्शनी बनी, विदेशों की सेवा शुरू हुई, विदेशों के आधार पर वैल्यूज के बारे में ज्ञान हुआ, वैल्यूज के बारे में रिट्रीट शुरू हुई, क्या क्या हुआ। और इसके कारण भारत में भी जैसे विदेश में ऑक्सफोर्ड में बना और लंदन में बना ऑक्सफोर्ड और उसके बाद न्यूयॉर्क में बना अनुभूति भवन, अरे अपने पीस विलेज, सैन फ्रांसिस्को में बना अनुभूति भवन, मेलबोर्न में बना, सिडनी में बना। इस प्रकार से बड़े बड़े सेवा केंद्र भी बनते रहे, आश्रम जैसे बने। भारत में भी हिंदुस्तान बाबू के सिवाय दिल्ली में ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना, हैदराबाद में शांति सरोवर बना, और मैसूर में बना, बेंगलोर में भी बना, इस प्रकार से रायपुर में बना, इस प्रकार से साधनों के अंदर भी वृद्धि होती रही। और जिन्होंने उसको अपनाया उसके वहां की सेवा बहुत बढ़ती रही, और जिन्होंने नहीं अपनाया नया साधन, तो इसलिए नए साधनों की भी एक चुनौती है कि नया साधन है उसको हमको सीखना चाहिए, हमको आना चाहिए। प्रदर्शनी का सिखाने, प्रदर्शनी किया, एक प्रदर्शनी किया, उसमें से दूसरी तीसरी, आज तो हरेक विंग वालों ने अपनी प्रदर्शनी बना दिया है, और इसके आधार पर प्रदर्शनी के चित्रों के आधार पर सेवा बहुत अच्छी होती है। उसके बाद क्या हुआ, टेलीविजन की सेवा शुरू हुई, आप सबको मालूम है ना, आस्था चैनल में आता है और भी कहीं, यहाँ पीछे में बार बोर्ड रखा हुआ है, इसके अंदर आप जाके पढ़ लेना कब कब हमारे कार्यक्रम टीवी पर आता है, कौन सी लैंग्वेज में आता है। टीवी के आधार पर, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको कहते हैं, टीवी अर्थात इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सेवा करने का ये नया कारोबार शुरू हुआ है, और इसके अंदर जो जिसके प्रकाश की सेवा करते हैं, आपको मालूम नहीं होगा वर्तमान समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा रोज के 1.5 करोड़ लोग जो है बाबा का संदेश सुनते हैं, 1.5 करोड़ लोग। हमारी पीस ऑफ माइंड चैनल भी चलती है, गुजराती मराठी कन्नड़ा ऐसी ऐसी भाषाओं में भी चैनल के ऊपर आता है, देश में आता है, विदेश में भी आता है, इस प्रकार से होता है। नए नए बहन भाई जो है इस चैनल के उपयोग के द्वारा उसके पर भाषण कैसे किया जाए उसके बारे में, जैसे शिवानी बहन है मराठी में, अपनी बहनें जो है वो भी मराठी की भाषा की शिवानी बहन जैसी है, कन्नड़ा भाषा में है, ऐसे मतलब अनेक बहन भाई है तैयार हो गए हैं, और रोज के 1.5 करोड़ लोग, आप कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है कि रोज एक दिन में 1.5 करोड़ लोग की सेवा करें। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो ताकत है कि आप क्या क्या कहा हुआ जो है वो संदेश जो है रोज के 1.5 करोड़ लोग के पास पहुंच सकता है। तो इसी के कारण क्या हो गया, बाबा ने यहाँ पर स्टूडियो बनाने का कारोबार शुरू कराया, और बाबा ने पिछले 16 अक्टूबर को वो स्टूडियो बन गया, जिसका कारण लक्ष्य क्या रखा, हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने लक्ष्य रखा कि अभी 1.5 करोड़ लोग रोज के बाबा का ज्ञान सुनते हैं, योग करेंगे 3 मिनट। ओम शांति। मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से लक्ष्य रखा गया है कि अभी तक 1.5 करोड़ लोग रोज का बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उसके बदले में रोज के 15 करोड़ लोग बाबा का संदेश सुने, इस प्रकार का लक्ष्य रखकर के स्टूडियो बनाया हुआ है। 15 करोड़ लोग सुने कोई मामूली बात नहीं है, देश विदेश के अंदर उस जी टीवी के द्वारा लंदन में भी ब्रॉडकास्ट होता है, सैन फ्रांसिस्को में होता है, आपने मॉरिशस में भी होता है, सब जगह अपने मलेशिया में भी होता है, इस प्रकार से होता है। देश विदेश के अंदर भाषाओं में हिंदी भाषा में, गुजराती मराठी कन्नड़ा तेलुगु ऐसे ऐसे भाषाओं में भी ये कार्यक्रम होता रहता है। कभी लक्ष्य रखा हुआ है स्टूडियो का जो है 16 अक्टूबर को दादी यहाँ तीनों दादियों ने उद्घाटन किया। तो ये नया साधन जो है, जो नई नई चीज जो होती है उसमें कमाई ज्यादा होती है, आपको मालूम है ना, जब भी बिल गेट्स जो है दुनिया का सबसे पैसा वाला अमेरिकन क्यों बन गया, क्योंकि उसने कंप्यूटर की इन्वेंशन किया, और कंप्यूटर के अंदर उसकी रॉयल्टी के आधार पर इतनी कमाई हुई कि 1972 में $5,000 से धंधा शुरू किया था, $3,000 अपना था, $2,000 अपने दोस्त का था, और $5,000 में धंधा शुरू किया। पहले वर्ष में नुकसान हुआ तो उसका दोस्त निकल गया, तो कहा कि ठीक है मैं आपको $100 करके आपका कर्जा जो चुक तो करूंगा, और 1974 में $3,000 से धंधा करने वाला 1993 से 93 हाँ कितना वर्ष हो गया आप गिनती कर सकते हैं। 19 साल के अंदर यह भाई जो है बिल गेट्स दुनिया का 1993 में दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला बन गया। कारण कि नए नए साधनों के द्वारा सेवा करते हैं तो बाबा की भी नए नए साधनों के ऊपर दृष्टि ज्यादा होती है और नए साधन बना करके बाबा हम बच्चों को देते हैं कि बच्चे इनके द्वारा सेवा करो। छोटे बच्चे माताएं यहाँ बैठी हुई है, घर में जाओ पुराना खिलौना होता है तो बच्चा इतना नहीं खेलते, नया खिलौना बच्चों को दे दो। आप में अभी सही कहीं या माँ बाप बन करके रहे हुए हो, अनुभव किया होगा, नया खिलौना मिलता है तो बच्चे फौरन उसको स्वीकार कर लेते, ऐसा होता है ना। तो इस प्रकार से नए साधनों के द्वारा साधना करना आसान होता है और नए साधनों के द्वारा सेवा जो है विहंग मार्ग से हो सकती है। और इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, ये सारी बातें जो है इतनी सुंदर बन गई हुई है। उसमें भी उसके द्वारा डिजिटल कैमरा, डिजिटल ये सारा कितना बदली हो गया। पहले जमाने में जो कैमरा होता था ना उसके अंदर फिल्म होती थी, जो कैमरा जानते होंगे पहले फिल्म होती थी और फिल्म का रोल आता था, वो रोल निकाल करके फिर डेवलप करना पड़ता था, फिर प्रिंट निकालना पड़ता था, ये सब होता था। अब तो क्या हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया है, इस कैमरा में फोटो निकालो कंप्यूटर में, उसको स्टोर कर दो और कैमरा आगे बढ़ता जाओ, बढ़ाते जाओ। आजकल क्या हो गया, जिनके पास मोबाइल फोन है ना वो सब कैमरामैन बन गए, सब फोटो निकालते रहते हैं, फोटो निकालते रहते हैं। हाँ कम से कम यहाँ जितने भी बैठे होंगे सबके कैमरा में, सबके मोबाइल में कैमरा होगा। कैमरा को उपयोग में कैसे लाया जाए, सेवा में कैसे उपयोग में लाया जाए वो विधि नहीं जानते, इसे साधन होते हुए भी उनका सेवा में उपयोग नहीं ला सकते। और ये कैमरा हमारे पास जो स्टूडियो में जो है कैमरा वो जरा ज्यादा अच्छा है। और उसके द्वारा आप सबको बताना चाहता हूँ कि 3 स्टूडियो है ऑडियो विजुअल, जिसके अंदर टेलीविजन में जब फिल्म आती है ना, प्रोग्राम आते हैं, इस प्रकार का बनाने का 3 स्टूडियो है। दुनिया के अंदर तो एक ही स्टूडियो होता है, वो भी मुश्किल से चलता है। हमारे यहाँ 3 स्टूडियो ऑडियो विजुअल का है और 1 स्टूडियो जो है ऑडियो का है, खाली गीत आदि को रिकॉर्ड करने का। जैसे आज आपने देखा भानु भाई ने गीत गाया, ऐसे सिंगल गीत गाने वाले जो होंगे उसके लिए भी गीत का वो है। ऊपर फिर चौथे मंजिल पर प्रीव्यू भी है कि जो शूटिंग हुआ, जो उसका कारोबार जो हुआ वो कैसे चलता है। और वन ऑफ द बेस्ट कृष्ण कुमार करके जो है, जिन्हों को मालूम होगा टीवी दुनिया या कैसेट की दुनिया का, जो टी सीरीज की कैसेट बनाते हैं, उसका भाई का मर्डर हो गया था, उसका छोटा भाई यहाँ आया था 26 जनवरी को, जब नीचे के 2 हॉल का उद्घाटन हुआ तब उसने कहा कि एकदम आपका जो स्टूडियो जो है एकदम 100% लेटेस्ट है, 100% लेटेस्ट। ऐसा तो उसने कहा हमारे पास भी नहीं है, हम करोड़ों का धंधा करते हैं परंतु हमारे पास भी ऐसा नहीं है, ऐसा लेटेस्ट साधन बाबा ने साधना करने के लिए दिया हुआ है। हम चाहते हैं इसके द्वारा अच्छे नए नए ड्रामा बने, नए नए टॉक शो मतलब वार्तालाप बने, भाषण का बने, प्रोग्राम बने। और जो हमारे टीवी पर जो प्रोग्राम आते हैं पहले बाहर कराते थे, खर्चा होता था, इसके बदले में हमारे पास यहाँ खर्चा होता, यहाँ या घर में बन जाता है और इतने अच्छे टीवी के प्रोग्राम बनते हैं और सबके इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। सुभाष घाई करके एक फिल्म प्रोड्यूसर है, अपने यहाँ पर अमृत महोत्सव के समय पर आया था, उसने देखा स्टूडियो तो कहा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसा लेटेस्ट स्टूडियो किसी के पास नहीं है, इतना आपके पास लेटेस्ट है। माने बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाने के लेटेस्ट एकदम अप टू डेट ऐसा श्रेष्ठ स्टूडियो बना करके दिया है। और कईयों को मालूम नहीं है क्या सेवा करें, परंतु नए साधनों के द्वारा सेवा कैसे करनी चाहिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमारे पास हम बहुत चाहिए, हमको प्रश्नोत्तर करने के लिए बहन चाहिए, भाई चाहिए, जो आएंगे उनके लिए प्रश्न पूछे करके। जैसे आपको टीवी में आप सुनते होंगे प्रभु चावला का एक प्रोग्राम आता है सीधी बात, ऐसे मतलब प्रोग्राम आते हैं सामने वालों का, ऐसे प्रश्न पूछ करके उसके द्वारा कारोबार होता है, सेवा होती है। तो ऐसे जो भी यहाँ महानुभाव आते हैं, आपके भी कहीं VIP होते होंगे, उनके यहाँ लेकर के आइए, उनके यहाँ टीवी में इंटरव्यू रिकॉर्ड कर देंगे और हमारे चैनलों के द्वारा, साधना चैनल है, आस्था चैनल है, हमारी पीस ऑफ माइंड चैनल बाबा की है, इन सब के अंदर ये प्रोग्राम आते रहेंगे तो क्या हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, रोज का अगर जो हमारा लक्ष्य है कि रोज का 15 करोड़ लोगों को संदेश पहुंचे, तो आपको नहीं लगता है कि सेवा की गति तीव्र हुई? क्या समझते हो, आपके सेवा केंद्र द्वारा कितना आता है समाचार? आज भी या पहली तारीख को सुनाते हैं म्यूजियम में इतने आए, इधर इतने आए, सोमनाथ में इतने आए, 3-4 लाख लोग आते। सोमनाथ में एक बार 6 लाख लोग आए थे, बाकी तो इतने ही होते। सारे मास में 3 यहाँ तो 1-1.5 लाख आते हैं। सारे मास की सेवा के परिणाम 1-1.5 लाख होते हैं, और यहाँ एक दिन में मतलब 1.5 करोड़ लोग आ सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसके लिए ऐसे कला ऐसे श्रेष्ठ प्रोग्राम बन जाए तो क्या हो जाएगा, सेवा की गति जो है, पुरुषार्थ की गति जो है वो तीव्र बनेगी। और जो उसको निमित्त बनेंगे, आप जानते हैं ना भर्तृहरि शास्त्रों में है, भर्तृहरि कौन था? गंगा को ऊपर से शिरो सार्वम सर्वा प्रविशंती, मतलब गंगा जो है स्वर्ग में थी, वो स्वर्ग में से भर्तृहरि के जटा में आई, फिर वहां से फिर समुद्र में गई, जमीन पर गई, और फिर जाकर के समुद्र को मिली। तो भर्तृहरि जो है उसने गंगा को लाया। इस प्रकार से ये ज्ञान गंगा जो है, हमारी ज्ञान गंगा जो है उसको दुनिया के अंदर भर्तृहरि बन करके फैलाना है। अब जितना जो ज्यादा फैलाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि सबको अपनी सतयुग त्रेता युग की प्रजा और द्वापर और कलयुग के अपने भक्तों का समय पर वर्तमान समय में ही निर्माण करना है। ऐसा नहीं कि सतयुग में आपकी प्रजा बनेंगी, ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में आपके भक्त बनेंगे। आपके भक्त आपकी यादगार के रूप में यहां से ही उसको बनाना पड़ेगा, यहां से ही उनको ज्ञान दे करके तैयार करना पड़ेगा। कईयों को भक्ति के अंदर श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, कईयों को ज्ञान के अंदर श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। ऐसा सुंदर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा प्रारब्ध बनाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है, एक भाई ने कहा कि मैं अपनी राजधानी स्थापन कर रहा हूं, तो बाबा ने सीधा उसको बताया, तुम राजधानी स्थापन कर रहा है परंतु प्रजा कितनी बनेगी उसका चिंतन किया है? क्या बाबा वो तो आप बनाएंगे। तो बाबा ने कहा मुझे कोई राज नहीं करना है, मैं कोई सत्युग में आने वाला नहीं हूँ, आपको ही अपनी प्रजा बनानी पड़ेगी, आपको ही द्वापर युग से आपकी यादगार बनाने, ऐसे भक्त आदि बनाने पड़ेंगे। तो हमारा भविष्य जो है बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, बहुत सुंदर बात कही हुई है कि आप बच्चों को इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसके आधार पर आपके भगत आपका गायन करेंगे, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसके आधार पर आपका भगत आपका पूजन करेंगे, और कौन सा ऐसा पुरुषार्थ होगा जिसके आधार पर आपके भगत आपका गायन और पूजन दोनों करेंगे। आज आप देखते हैं हमारे बॉम्बे में तो कई पॉलिटिकल लीडर के स्टैच्यू रखे हुए वर्ष में जब उनकी पुण्यतिथि आती है, जन्मतिथि आती है, उस दिन उसके पास जाकर के खादी का जो होता है उस हार पहना देते हैं, बस काम पूरा हो गया। ना उसका गायन होता है, ना पूजन होता है। साल में एक बार वो जो स्टैच्यू होता है ना उसका सफाई होती है, उसके ऊपर कौवे और कबूतर आदि बैठे हुए होते हैं, उसका जो भी कचरा पड़ा हुआ होता है साल में एक बार सफाई होती है। बाकी क्या होता है, तो कबूतर कौवे आदि के लिए बैठने का रहने का स्थान बन जाता है। तो ऐसे दुनिया वाले के स्टैच्यू ऐसे होते हैं, हमारे स्टैच्यू कैसे होंगे? हम बाबा ने मुरली भी कहा हुआ है कि आपका हर स्टैच्यू, आप सुबह उठते हैं तो उसके उठने का भी दर्शन अलग प्रकार का, उसको मंगला का दर्शन कहते हैं, फिर भोजन का, फिर स्नान का, ये सारे हर प्रकार का सारे दिन की जो आपकी दिनचर्या है वो सारी दिनचर्या का आपका गायन होता है, आपका पूजन होता है। कहाँ हमारा गायन और पूजन, और कहाँ आज के नेताओं का गायन और पूजन। तो इस प्रकार से हमारा भविष्य का निर्माण जो है हमारा ही कहीं काम बनना करेंगे। हमारे में से कोई ऐसा होगा जो दिलवाड़ा का मंदिर बनाएगा, हमारे में से कोई ऐसा होगा और भी कई जगह का मंदिर बनाए होंगे। ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर की स्थापना हाँ ब्रह्मा बाबा ने किया, मालूम है ना आप सबको, सोमनाथ का मंदिर बाबा का। हम हर हफ्ते में चार बार पांच बार सोमनाथ के बारे में आता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा उसकी स्थापना हुई और इसके द्वारा भक्ति की स्थापना हुई, भक्ति की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से हमारा ये हाथ में हमारा भविष्य है। हम लोगों ने जब योग की प्रदर्शनी बनाई, योग की प्रदर्शनी बनाई, तो हमने बाबा को, ब्रह्मा बाबा को लिखा कि इस योग की प्रदर्शनी का अंतिम चित्र, समाप्ति का चित्र होता है ना, अंतिम चित्र आप बना करके भेजिए। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे मैं बना करके भेजता हूँ। तो बाबा ने वो चित्र बनाया जो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, कईयों के पास सेंटरों पर भी वो चित्र है। पृथ्वी जो है मृत्यु शैया पर बैठी सोई हुई है और ऊपर में एटम बम और हाइड्रोजन बम गिरने की तैयारी में है, और सन्यासी महाराज कहते हैं कि अभी तक कलयुग बच्चा है, और इस प्रकार का एक चित्र है। आप कईयों ने देखा होगा, मैं देखा होगा, हाँ तो हमारे म्यूजियम में जाकर के ऊपर जाएंगे तो आप देख लेना। और नीचे बाबा ने उसके नीचे मैसेज लिखवाया कि आपका भविष्य, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य न और कोई बना सकता है न और कोई बिगाड़ सकता है, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य न कोई और बना सकता है न कोई और बिगाड़ सकता है, आप सब अपने भविष्य के मास्टर ब्रह्मा हो, अपने भविष्य के, हम अपने भविष्य के, हम बाबा भी हमारा भविष्य नहीं बना सकते, बाबा हमको भविष्य के लिए पुरुषार्थ क्या करना चाहिए उसका ज्ञान दे सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो अंग्रेजी में कहावत है, कहावत है यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर फॉर योर हॉर्स, हॉर्स मस्ट ड्रिंक वाटर फॉर इटसेल्फ। इस प्रकार से हमें भी बाबा ज्ञान दे सकता है, बता सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, बाकी सब करा सकता है, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। इसलिए वर्तमान समय की समस्या में यही है कि हरेक को अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ करना ही है, और हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथों में है। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे इतना ही, हमने आपको जो चार बात बताई, विश्व महाराजा और फिर रॉयल फैमिली, फिर साहूकार और फिर प्रजा, बाकी प्रजा के नीचे में भी बहुत है, बाबा उसका नाम नहीं लेते हैं तो हम भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे भविष्य का जो प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध बनाने की जो विधियां है उसको धारण करें, और उसके आधार पर जो नए नए साधन मिलते हैं उस साधनों के द्वारा ईश्वरीय सेवा के अंदर उसकी गति और प्रगति बढ़ा करके अपना श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करने का प्रयत्न करें। यही हमारी इच्छा है कि हमारे आप सब जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, जितने भी ये टीवी ये माइक के द्वारा संदेश सुनते होंगे, इन सब को हमारा नम्र निवेदन यही है कि अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न कीजिए। और इसलिए बाबा ने लास्ट में कहा हुआ है, बाबा का एक लास्ट में शब्द हमेशा ही होता है, बहुत सुंदर बाबा ने लास्ट में कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और उसके आधार पर दूसरा भी है कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, बाप की मदद हम मिल सकती है, हमेशा मिल सकती है, हम बाप मदद देने के लिए तैयार हैं, परंतु क्या करें, हम बच्चों के जो टेलीफोन जो है ना, लौकिक दुनिया के कारोबार में इतने हमारे टेलीफोन व्यस्त होते हैं कि बाबा ऊपर से अपने टेलीफोन के रूपी हमको प्रेरणा देने के लिए तैयार है, पर तो हमारे हम वर्तमान के काम, वर्तमान के समस्याओं में इतने बिजी है, उलझनों में इतने बिजी है कि बाबा का टेलीफोन की लाइन बाबा को मिलती ही नहीं है। बाकी हम बाबा बच्चों को मदद करने के लिए तैयार है, बाबा तैयार है पर हम तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का अनुभव बताऊं, मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद बहुत दर्द होता था, दर्द इतना होता था कि हम दर्द के दूर करने के लिए उसमें ही बिजी व्यस्त हो गए। इतने में शील दादी आई दो तीन घंटे के बाद, तो हमने शील दादी को कहा बाबा से संदेश पूछो कि मैं मेरे को दर्द बहुत होता है क्या करूं। तो शील दादी वहां हॉस्पिटल में ही बाबा के पास गई, तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि बच्चे को कहो कि बाप तो मदद करने लिए तैयार है, पर तो बच्चा जो है ना दुख होता है, पीड़ा होती है, पेन होता है, इन सब बातों में इतना व्यस्त था कि बाप उसको मदद करना चाहता था पर बाप की मदद बच्चे तक पहुंचती नहीं थी। इसी प्रकार से हम सबका यही है, ये मेरा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं, इस प्रकार से सबका अनुभव यही है कि बाप आपको मदद करने लिए तैयार है परंतु आप मदद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी टेलीफोन लाइन जो है ना वो और सब बातों में व्यस्त होती है। इसके कारण क्या होता है कि बाप का संदेश जो है, बाप का प्रेरणा जो है, बाप जो चाहते हैं वो विचारधारा आप तक नहीं पहुंचती। इसलिए जितना बाबा ने जो कल बताया ना, हम मन को स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो, बुद्धि को स्वच्छ शुद्ध रखो और हमारी मन और बुद्धि की लाइन क्लियर रखो तो बाबा के प्रेरणाओं का, बाबा की मदद का आपको अनुभव हो सकता है। और जिनों को बाबा की मदद का अनुभव होगा उसको भी मालूम पड़ेगा कि बाबा की मदद क्या है। हमको दुनिया की सबकी मदद मालूम है, पैसे की मदद क्या हो सकती है वो मालूम है, नौकरी की मदद क्या हो सकती है वो मालूम है, अन्न खाते हैं उसकी क्या मदद मिलती है वो मालूम है, परंतु परमात्म शक्ति की क्या मदद हो सकती है और उस शक्ति की मूल्य क्या है वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव नहीं है। कारण यही है कि हमने उस अनुभव के लिए पुरुषार्थ ही नहीं किया हुआ है। बाबा इसलिए पिछले साल की मुरलियों में कहा है कि बच्चों को अभी अनुभूति करने और कराने की सेवा करनी है, तो अनुभूति करने और कराने की सेवा। कल भी बाबा ने दूसरी बात भी कही सबको, ये जो राजस्थान की कनेक्शन की मुरली थी उसमें कि वारिस क्वालिटी और मालूम है ना, वारिस क्वालिटी और माइक क्वालिटी बच्चों का निर्माण करना। हम क्या हो गया है, साधारण सेवा में इतने बिजी हो गए कि जो बाबा का डायरेक्शन जो होता है क्वालिटी वाली सेवा करने के लिए इतना समय नहीं निकालते हैं। क्वांटिटी की सेवा करने में अभी फिर भी समय निकाल देते हैं परंतु क्वालिटी की सेवा करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। बाबा ने कहा हुआ कैसे वारिस क्वालिटी या तो माइक क्वालिटी बच्चों का गुलदस्ता बना करके यहां लेके आओ, फिर क्या होता है कोई नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि सब अपनी सेवा में, साधारण सेवाओं में, संख्या बढ़ाने में, अपने सेवा केंद्रों बढ़ाने में, अपने ये सब बातों में ही व्यस्त है। और इसके कारण क्या होता है कि बाबा का जो डायरेक्शन जो है कि जो क्वालिटी की सेवा करो, माइक क्वालिटी और वारिस क्वालिटी, ऐसे बच्चों का निर्माण करना, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना, वो करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। क्योंकि हम क्वालिटी की सेवा नहीं करते, क्वांटिटी की सेवा करते हैं। तो इसलिए जो जो बाबा की करंट डायरेक्शंस जो है पुरुषार्थ की, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की, ऐसी बातों का पुरुषार्थ कीजिए और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो ही सतयुग की दुनिया में श्रेष्ठ पद मिल सकता है। बाकी क्या है, खाली मन में सोचेंगे तो ऐसे के अपना आपका श्रेष्ठ भविष्य नहीं बनने वाला है। आपको श्रेष्ठ भविष्य बनाना हो तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ आपको ही करना होगा। इसलिए अपना पुरुषार्थ आप खुद करो और आप श्री बाबा की मदद का अनुभव करो और उस अनुभूति के द्वारा सेवा को आगे बढ़ाओ। सब प्रकार के बहन भाई कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समर्पित जीवन होता है तो हम आगे बढ़े, ऐसा नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। मैं आपके सामने सन्मुख बैठा हुआ, मैं घर गृहस्थ में ही रहता हूँ और घर गृहस्थ में रहते हुए भी स्टूडियो सेवा के अंदर जो आपको हमारी बहन जी ने बताया, इस प्रकार की अनेक प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहता हूँ, सेवा में मददगार रहता हूँ, दादी दीदी जो भी कहते हैं उसको करने में, बाबा जो भी कहते हैं उसके करने में लगा हुआ रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थ में रहने वाले सेवा नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आप भी बढ़ सकते हैं, सब बढ़ सकते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में ही रहते हुए भी कमल पुष्प समान जीवन बना करके, पवित्र जीवन बना करके श्रेष्ठ पद का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए हमारी आप सबको रिक्वेस्ट यही है कि वर्तमान की चुनौती को स्वीकार करिए और वर्तमान की इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि इसी जीवन में ही हमारा भविष्य का 80-82 जन्म का प्रारब्ध बनने वाला है, और इसीलिए जो भी कर रहा है एक बात इसको कर लीजिए। आपको एक बात एक भी और भी बता दूं, एक बार बाबा ने कहा कि आपके पास जो आप पुरुषार्थ करते हो एक सेकंड की कीमत कितनी है। मैंने कहा एक सेकंड की कीमत क्या होगी। हाँ, कईयों ने कहा एक सेकंड की कीमत क्या होगी क्या होगी, तो बाबा ने कहा एक सेकंड की कीमत लाखों रुपया जितनी है। तो मैं पीछे में बैठा था और भी हमारे साथ पटना के बहन भाई थे, तो इन्होंने कहा बाबा एक सेकंड की कीमत लाखों रुपया कैसे हो सकती है। तो बाबा ने कहा कि आपको अभी सिखाया मैंने कि 82 जन्मों का प्रारब्ध अभी बनता है। तो बाबा ने एक पटना के एक भाई को पूछा सत्युग में तुम्हारे पास कितना धन होगा। बाबा ने पटना के एक भाई को पूछा अभी तो बाबा के सत्युग में तुम्हारे पास कितना धन होगा। तो उसने कहा बाबा वो तो गिनती नहीं हो सकता इतना धन होगा। तो इतना धन होगा जिसकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसा 21 जन्म सत्युग त्रेता का, और इसके बाद द्वापर से भी होगा, राजा तो बनेंगे, विश्व महाराजा से राजा बन जाएंगे, तो कितना धन होगा। और पुरुषार्थ कितना कर समय कर सकेंगे, 15-20-25 साल कर सकेंगे, अभी समय कितना बाकी रहा हुआ है, इसके अंदर इतना पुरुषार्थ करना है, इतना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना है, तो इसके आधार पर आप गिनती करो एक सेकंड की वैल्यू कितनी है। फिर भी क्या होता है हम समय को पहचानते नहीं है, और समय की जो वैल्यू जो होनी चाहिए हमको नहीं होती है, उससे क्या होता है और फालतू बातों में जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं, और जिस बातों के आधार पर हमारे में कोई भी बात करने की जरूरत भी नहीं है। आपस में बैठ करके पूछेंगे अच्छा इलेक्शन में कौन जीतेगा। अभी एक भाई मेरे को आया उसने पूछा अमेरिका में कौन जीतेगा, ओबामा जीतेगा और उनके जो प्रतिनिधि अपोजिशन में वो जीतेगा। मैंने कहा भाई अमेरिका में कोई भी जीते उसमें आपका क्या कनेक्शन। कहा नहीं नहीं हम दुनिया में रहते हैं ना तो दुनिया की बातों को मानना चाहिए जानना चाहिए। तो मैंने कहा वो तो रिजल्ट आ जाएगा तो हम जानेंगे, तेरे मत के आधार पर तू कहेगा कि ओबामा जीते तो क्या ओबामा जीतेगा क्या। फालतू संकल्प विकल्प करने की हमें इतनी हैबिट बन गई है, इतनी हैबिट बन गई है कि जिस काम के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है ना इन बातों में भी हम अपना समय फालतू में बिगाड़ रहे हैं, ये हकीकत है। इंग्लैंड क्या होगा, इधर क्या होगा, मनमोहन सिंह के इलेक्शन में क्या होगा क्या होगा, इस प्रकार से फालतू चिंतन जिसको कहते हैं विचार सागर मंथन के अंदर, इस प्रकार से पानी का दो प्रकार के मंथन होते हैं, एक जो है दही होता है उसको मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, और पानी का होगा मंथन करेंगे तो क्या होगा, पानी का पानी ही रहेगा। इस प्रकार से हमारे विचार सागर मंथन में हम पानी का मंथन ज्यादा करते हैं, और इसके कारण क्या होता है मक्खन नहीं मिलता है, और मक्खन नहीं मिलता है इसके कारण क्या होता है कई पुरुषार्थ के अंदर थक जाते हैं। थकावट इसलिए आती है क्योंकि फालतू संकल्प विकल्प में हम अपना समय बर्बाद करते हैं। इसके बदले में फालतू संकल्प विकल्प छोड़ दो, जिसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है उस बातों के कनेक्शन में क्या फायदा। मैंने उस भाई को बहुत समझाया कि इंग्लैंड के अमेरिका के अंदर ओबामा जीते कि दूसरा जीते उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है। कहा नहीं रमेश भाई दुनिया में रहते तो सब कुछ जानना तो चाहिए ना। तो मैंने कहा ईश्वरीय परिवार में रहते हो तो ईश्वरीय परिवार की बातें सब जानो ना। हमने उनसे पूछा जितना यज्ञ का लिटरेचर छपता है वो पढ़ा हुआ है। कहा नहीं 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 पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा जिस दुनिया में रहते हो उसको तो पढ़ो, उसका तो लिटरेचर पढ़ो, अमेरिका का लिटरेचर पढ़ करके कौन जीतेगा क्या करेंगे इसके क्या फायदा। इसके बदले में बाबा का ज्ञान का लिटरेचर पढ़ेंगे, ज्ञानामृत पढ़िए, वर्ल्ड रिन्यूअल पढ़िए, ये सब बातों को पढ़िए। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ यहाँ कोई भी भाई बहन ऐसा बैठा होगा कि जिसने यज्ञ की जितना भी साहित्य छपा हुआ है वो सब पढ़ा हुआ होगा। हमने कई बार हमारे सेवा केंद्रों को कहा हुआ है कि हर एक सेंटर के ऊपर लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर एक सेंटर पर ऊपर ज्ञान के किताबों की लाइब्रेरी होनी चाहिए, और आप एक किताब लेके जाओ दो चार दिन के बाद पढ़ करके वापस तो दूसरी लो तीसरी लो। इस प्रकार से ज्ञान के सभी किताबों को पढ़ना आपको जरूरी है। आपको मालूम नहीं होगा हमारे विदेश के बहन भाई कितना पुरुषार्थ करते हैं। मैं मलेशिया में गया था, मलेशिया में यहाँ के दादियों का बड़े भाई बहनों का जो भी क्लासेस थे उसकी कैसेट उसकी कैसेट 400 कैसेट थी मलेशिया में हिंदी भाषा की, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सेंटरों के बजा करके देखो तो क्या होता है, 400 कैसेट किसी के पास होगी? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के दादियां दीदियां भाभी अपने बाबा की मुरलियां जो है, या तो बड़े भाई बहन जैसे और भी जो है, उन सब के क्लासेस की 400 कैसेट थी। हमने क्या क्या करते हैं, क्या है वो लेके जाते हैं, सुनते हैं। गीतों की सबके पास होनी चाहिए। बाबा ने भी ये कहा हुआ कि जब मन में कोई भी प्रकार की दुविधा या दुख उत्पन्न हुआ होगा तो गीतों की कैसेट बजा करके मन को प्रफुल्लित कर रही है, आनंदित कर रही है। तो इस प्रकार से साहित्य के रूप में लाइब्रेरी सब जगह पर हो तो क्या हो जाएगा। अगले साल आप जब आएंगे तब मैं आपको सवाल पूछूं कि आपने सबने बाबा का साहित्य पढ़ा हुआ है, तो आपका सबका हाथ ऊंचा होना चाहिए कि हाँ हमने यज्ञ का बाबा का जितना भी साहित्य छपा हुआ है, जो भी आप भाषा जानते हो, कोई गुजराती जानता होगा, कोई मराठी जानता होगा, कोई हिंदी जानता होगा, जो भी मैगजीन छपते हैं इस प्रकार से, आज तो वैरायटी रूप के साहित्य छपता है, उसको पढ़ करके अपने आप को तैयार तो कीजिए। और साहित्य के द्वारा क्या होती है, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, सामना करने की शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। ये सब शक्तियां तब बनेंगी बढ़ेंगी जब इस प्रकार का हमारा पुरुषार्थ होगा। तो इसलिए आप सोचिए कि हमको अपना पुरुषार्थ की गति और उसको तीव्र बनानी है या नहीं, हमको अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है या नहीं। नहीं तो क्या हो जाएगा, बाबा के बनने के बाद भी साधारण प्रजा बने तो उसमें प्राप्ति क्या हुई? क्या इसी पुरुषार्थ के आधार पर कहीं विश्व महाराजन बनेंगे, विश्व महारानी बनेंगे, और कई ऐसे भी होंगे जो साधारण प्रजा का प्रजा पर ही रहेंगे। मेरा इसलिए आप सबको निवेदन है कि साधारण प्रजा बनना तो बहुत आसान है, परंतु उसके प्रति में श्रेष्ठ पद साहूकार, क्या साहूकार से ऊपर दैवी परिवार जो राजाई परिवार है उसके सदस्य बनो, उसके भी आगे सिंहासन के अधिकारी बनो, तो वो प्राप्ति है। तो ऐसी प्राप्ति के लिए लायक पुरुषार्थ करो, यही हमारी आप सबको नम्र विनंती है। ओम शांति।
ओम शांति। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वैसे तो हम शब्दों में आभार प्रकट नहीं कर सकते, बाप दादा की वाणी की जो गुह्यता है, उसकी गहराई को किस तरह से हम समझें, उसके राजों को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारें, वो आपने बहुत ही गहराई से हमको समझाया। और हम सेवाओं में कैसे भरतरी बन सके, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको निकालकर अपने जीवन को बाबा ने जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त कर सके, आपने हमें स्वस्थिति का आईना दिखाया, भविष्य पुरुषार्थ हेतु बाबा की प्रेरणाओं को समझाया। शब्दों से आभार प्रकट करना संभव नहीं, शब्दों से आभार प्रकट करना संभव नहीं, आपने ज्ञान युक्त अनुभवों से जो हमको आज सजाया, धन्यवाद। शाम को 5 बजे सभी यहाँ आएंगे, 5 से 5:30 योग रहेगा, उसके बाद सूर्य भाई की क्लास है।
शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। पूज रहा शिव का संदेश में। ओ, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में,
आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में।
गूंज रहा शिव का संदेश
सुन लो सभी दिशाओं